ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा और ऊंचा कीजिए, थोड़ा और ऊंचा, और ऊंचा। जब प्रसाद बनाने वाले कथा सुन नहीं पाते हैं उनके लिए हाई आवाज चाहिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच। इति विकल्वितं तासाम् श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहास्य सदयं गोपीः आत्मा रामोऽप्यलीलमान् ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः उदारहास द्विजकुण्डदीधितिः व्यरोचतैनाङ्कयोडुभिवृतः उपगीयमान उद्गायन् वनिता शतयूथपः मालां बिभ्रद वैजयन्तीं व्यचरन् मण्डयन् वनम् नद्यः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमबालुकम् जुष्टं तत्तरलानन्दे कुमुदा मोदवायुना बाहु प्रसार परिरम्भकरालकोरु निविष्टना लभन नर्म नखाग्रपातैः शैल्यावलोक हसितै ब्रज सुन्दरीणाम् उत्तम भयं गतिपतिं रमयां चकार एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे निरेस्त्रीणा मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। इस प्रकार गोपियों के द्वारा कहे गए वाक्यों का उभयार्थ समझते हुए भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेम वैकल्य पूर्ण अर्थात रोष और दैन्य के साथ कही गई बात को सुनकर हंसे, उनके हृदय में दया भर गई और अपनी प्रेषी गोपियों को वे सुखी करने लगे, रमाने लगे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, अपने आत्मा के सुख में ही रमण करते हैं, तथापि ऐसे आत्मा राम प्रभु आत्मा राम रहते हुए ही प्रत्येक गोपी के साथ बात करने लगे, अश्रु मार्जन आदि करके और उनके साथ प्रेम चेष्टा करने लगे, क्योंकि वे जोगेश्वर हैं, जोगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। भगवान के साथ निकट मिली हुई गोपियों के साथ जो इस समय बहुत प्रसन्न हैं, अपने प्रियतम के स्नेह भरी दृष्टि को देखकर अथवा प्रियतम के मुख को देखकर गोपियों का मुख खिल गया, पूर्ण प्रसन्न हो गए। ऐसी प्रेमवती और प्रसन्न मुख गोपियों से घिरे हुए भगवान श्रीकृष्ण रस विशेष के उद्दीपन विचित्र लीलाएं करने लगे, उनकी चेष्टाएं गोपियों को बहुत सुख दे रही थी। जैसे हस्त आदि का स्पर्श करना, पुष्प अर्पण करना, गोपियों को माला पहनाना या ऐसे खुला पुष्प देना, मुस्कुरा करके उनको देखना, ये सब लीलाएं बहुत आनंद दे रही थी और भगवान प्रसन्न चित्त से हंस रहे थे। हंसने पर उनके दांत कुंद पुष्प के समान खिल जाते थे और वे प्रत्येक गोपी के साथ थे। उन गोपियों से घिरे हुए भगवान श्रीकृष्ण उस तरह सुशोभित हो रहे हैं जैसे ताराओं के बीच में चंद्रमा सुशोभित होते हैं। श्री गोपीजन उनके रूप गुण लीला को गा रहे थे, गोपियां गा रही थी और स्वयं भगवान भी उनके रूप गुण आदि को गा रहे थे। सैकड़ों जूथों में बटी हुई श्री गोपियों के वे नायक हैं, उस समय वैजयंती माला पहने हैं और वृंदावन को सुशोभित करते हुए विचरण करने लगे, विहार करने लगे। जन्मय जी की लहरों से टकरा करके पवन चल रहा था और वह कुमुद के आमोद से भरा हुआ था, कुमुद के सुगंध से भरा हुआ था पवन। ऐसे पवन से युक्त तथा सुशीतल बालुका से युक्त जमुना के कुलीन में भगवान ने प्रवेश किया। और प्रवेश करके गोपियों के साथ रास नामक क्रीड़ा विशेष करने लगे। अपनी दोनों बाहों को फैलाकर गोपियों का आलिंगन करना, और हाथ अलक उरु मिली स्तन आदि का स्पर्श करना, बीच बीच में परिहास करना, मजाक करना, और अपने सुकोमल नखाग्र का पाठ करना, छेड़ी और हंस करके देखना, इस तरह से ब्रज सुंदरियों के रतिपति को, महाभाव को बढ़ाने लगे और उन्हें सुखी करने लगे। इस प्रकार परमानंद घन परब्रह्म भगवान से गोपियों को जब इतना मान मिला, अपने प्रियतम का आलिंगन आदि पा करके, और यह देखकर कि श्री कृष्ण उनके आलिंगन आदि से बहुत आनंदित हो रहे हैं, यह देखकर गोपियों के मन में बहुत बड़ा मान उदित हुआ। वे इस पृथ्वी पर ये तीनों लोक में जितनी स्त्रियां हैं उनमें सबसे अधिक भाग्यशाली अपने को मानने लगी। कोई कोई गोपी कृष्ण से बोलना छोड़ दी, मान कर गई, और कुछ गोपियों को बहुत बड़ा गर्व हुआ है, मैं सबसे बढ़ करके। ब्रह्मा और शिव के भी नियामक भगवान श्री कृष्ण ने देखा, गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हो गया, और किसी गोपी को मान हो गया, तो उनके गर्व और मान को नष्ट करने के लिए जमुना के उसी पुलिंग पर श्रीकृष्ण अंतर्हित हो गए, कहीं गए नहीं, वहीं छिप गए। यह प्रणय गीत के अध्याय का अंतिम सब श्लोक। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीः आत्मा रामोऽप्यरीरमत्। भगवान श्रीकृष्ण आत्मा राम है, आत्मनि अथवा आत्मसुखे यह आरमते स आत्मा राम, जो अपने में रमण करे, अपने में सुख का अनुभव करे, वह है आत्मा राम। भगवान श्रीकृष्ण केवल आत्मा राम ही नहीं है, आत्मा राम मुनियों के अधीश्वर हैं, और इतना सुखमय है, इतना आनंदमय है भगवान कि मुनिजन जो स्वयं अपने रूप में रमण करते हैं, ब्रह्म स्वरूप में रमण करते हैं, वे लोग भी भगवान के गुणों को सुन करके पागल हो जाते हैं, मतलब वे भी भगवान कृष्ण के भक्त हो जाते हैं। आत्मा रामाष्ट मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्त हैत किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। भगवान के ऐसे गुण हैं, ऐसी विशेषता है उनके सौंदर्य आदि की, कि आत्मा राम मुनि गण भी समाधि से उब करके, समाधि तोड़ करके, अपने स्वरूप का चिंतन छोड़ करके, ध्यान वगैरह छोड़ करके भागवत सुनते हैं। चरित सुनहि तज ध्यान, ध्यान में उनको वो सुख नहीं मिलता है जो भगवान के कीर्तन में मिलता है, श्रवण में मिलता है। कुर्वन्ति अहै तो किम भक्ति, यह वाक्य सुत गोस्वामी के द्वारा बोला हुआ है। जब सौनकादि ऋषि ने पूछा कि सुखदेव गोस्वामी तो जन्म से ही महाविरक्त थे, आत्माराम थे, मुनि थे, बोलते नहीं थे और माया से पार थे, निर्ग्रंथ थे, उनकी अविद्या की ग्रंथि सदा के लिए कट गई थी, तो फिर वे ये भागवत शास्त्र क्यों पढ़े, क्या आवश्यकता थी उनको पढ़ने की। तो सुत जी कहते हैं कि आत्मा रामाष्टमुने वो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्त है तो किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणहरि, भगवान का ऐसा गुण है कि वह आत्मा राम मुनियों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जो संसार के किसी भी शब्द में नहीं रम सकते हैं, किसी भी रूप में जिनकी कोई रुचि नहीं है, वो चाहे स्वर्ग की देवियां हों या पृथ्वी की, पाताल की, कहीं कहीं भी किसी रूप में आसक्ति नहीं है, किसी शब्द में आसक्ति नहीं है, स्पर्श में आसक्ति नहीं है, किसी वस्तु में नहीं, जो आत्मा के आनंद में, अपने स्वरूप के आनंद में मग्न रहते हैं, ऐसे आत्मा राम मुनि गण भी भगवान की बात जब सुनते हैं तो वे अपने मत का आग्रह छोड़कर कृष्ण की अहैतुकी भक्ति करने लगते हैं। भक्ति केवल भक्ति के लिए, अर्थात भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं। यही बात सुखदेव गोस्वामी के विषय में है। सुखदेव गोस्वामी वास्तव में आत्मा राम थे, मुनि थे, निर्ग्रंथ थे, वे अपने आप में अर्थात ब्रह्म में वे रमते थे। इस देह से परे, माया से परे, जीव का अपना स्वरूप है और भगवान का भी प्रकाश में एक स्वरूप है, उसमें वे रम रहे थे। बाह्य अनुसंधान था ही नहीं सुखदेव गोस्वामी में। एक घटना के द्वारा शंकरादि ऋषि लोग स्वयं ही इस बात को कह रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी जन्म लिए अपने मां के गर्भ से, तो जन्म लेने पर वे उस समय 16 वर्ष के थे। बहुत काल तक वे गर्भ में रह गए थे, घर से निकल करके चल दिए, अपने स्वरूप के या ब्रह्म के अलावा कुछ चिंतन नहीं करते थे, कुछ भी बाह्य स्फुरण नहीं था, यहां तक कि यह स्त्री है या पुरुष है या भेद भी वे नहीं जानते थे। तो जा रहे थे, पीछे से भगवान वेदव्यास देव उनको पुकार रहे थे, पुत्र पुत्र सुनो सुनो सुनो, लेकिन वे सुन ही नहीं रहे थे। जाते जाते एक जगह एक सरोवर मिला, बहुत सुंदर सरोवर था और उस सरोवर में देवलोक की स्त्रियां स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी, वो नग्न स्नान कर रही थी, ज्योति स्त्रियां सब स्नान कर रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे, आगे आगे वे चलते गए चलते गए चलते गए, और वो लड़कियां स्नान कर रही थी, सरोवर में कूद रही थी, जलकेली कर रही थी, कोई तट पर बैठी थी, कोई कुछ, लेकिन सुखदेव गोस्वामी उसी रास्ते से बिल्कुल निकट निकट चले गए और उन स्त्रियों को कोई लज्जा नहीं आई, जबकि सुखदेव गोस्वामी युवक हैं और वे नग्न नग्न थे, युवक गए और नग्न और बिल्कुल निकट से गए, उन लड़कियों को कोई लज्जा नहीं आई, वो जैसे जलकेली कर रहे थे और नग्न बिल्कुल। पर पीछे पीछे भगवान वेदव्यास देव जा रहे थे, इनकी जब दृष्टि पड़ी उन नहाती हुई स्त्रियों पर, तो ये तुरंत सिर नीचा कर लिए, इधर उधर देखने लगे, अब वो आगे नहीं बढ़ पाए, जबकि ये वस्त्र पहने हैं और उन लड़कियों के दादा के समान आयु में वस्त्र पहने थे, दूर थे, वृद्ध हैं, फिर भी इनको देखते ही वो स्त्रियां झटपट सरोवर से निकल करके अपना अपना वस्त्र पहनने लगे। यह तमाशा देख करके भगवान वेदव्यास देव को बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारा बेटा युवक है और मग्न है, बिल्कुल निकट से गया तो इन लोगों को कोई लज्जा नहीं आई, और मैं दूर हूं, वृद्ध हूं, वस्त्र पहना हूं, तो मुझे देख करके लज्जा आ गई, क्या बात। तो जब उन लोगों ने वस्त्र पहन लिया ठीक से, तब भगवान वेदव्यास देव आगे बढ़े उन लोगों से कुछ पूछने के लिए। पृच्छति मनव जगदुस्तवास्ति स्त्री तुम भेजा न तो सुपस्त चित्त विविध चित्त। तो भगवान वेदव्यास देव पहुंचे, वो स्त्रियां बिल्कुल तैयार हो गए थे, वस्त्र पहन गए थे। भगवान वेदव्यास देव जाकर पूछे, पुत्रियों मैं एक प्रश्न करने आया हूं, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मेरा पुत्र बिल्कुल युवक है और मग्न है, बिल्कुल निकट से गुजरा और उसको देख करके तुम लोगों को लज्जा नहीं लगी, तुम लोगों ने वस्त्र नहीं पहना, और मैं तो वृद्ध व्यक्ति हूं और वस्त्र पहना हूं, और अभी दूर था तभी निकल निकल करके तुम लोग वस्त्र पहनोगी, क्या बात है। तो स्त्रियों ने कहा कि हे व्यासदेव, आप में अभी यह बुद्धि है कि यह स्त्री है और यह पुरुष है, आप में ये भेद बुद्धि है, लेकिन आपके पुत्र में ये भेद बुद्धि है ही नहीं। तो जो जानता ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, तो उसके सामने लज्जा क्या करना है, क्या इस वृक्ष के सामने कोई लज्जा करेगा। जो जानता ही नहीं है कि यह स्त्री है यह पुरुष है, भेद दृष्टि है ही नहीं, तो उसके सामने लज्जा क्या करनी है। कैसे जान गई कि उसके मन में भेद बुद्धि नहीं है। स्त्रियां कहती हैं हम सब समझती हैं, वास्तव में स्त्रियां सब कुछ जान जाती हैं, वो पुरुषों के हाव भाव को पूरा पूरा समझ जाती हैं, उनको ये बुद्धि भगवान ने दिया है। तो वो स्त्रियां कहती हैं आपका पुत्र इधर से गुजरा तो वो कभी हम लोगों को देखा भी नहीं, उसको थोड़ा भी आकर्षण नहीं हुआ कि यहां इधर सुंदरी लड़कियां नहा रही हैं, अरे यह कोई देखा ही नहीं, और जैसे आ रहा था वैसे आता रहा, उसको देखकर कोई संकोच नहीं हुआ, उसके पैर रुके नहीं, लेकिन आप जब देखे हम लोगों को नग्न नहाते हुए तो आपके पैर में ब्रेक लग गया, हम लोग देख रही थी आप पर रुकने लगे और अपने दृष्टि को हम लोगों की तरफ न करके इधर उधर करने लगे, पीछे होने लगे, हम समझ गए कि वो अभी तो इनमें भेद दृष्टि है, यह पुरुष है या स्त्री है, ये बुद्धि अभी में है। तो उन लोगों ने कहा कि आपके पुत्र में ये बुद्धि नहीं है, वे माया से बिल्कुल पार हैं, किसी भी सुंदर रूप में या किसी वस्तु में उनको कोई आसक्ति नहीं, जब यह बुद्धि है ही नहीं कि यह स्त्री है या पुरुष है, तो उसके सामने क्या लज्जा करना। ये सुखदेव गोस्वामी का गुण था, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब भगवान के रूप की कथा सुना श्लोक में, तो वह भगवान कृष्ण का पक्का भक्त हो गया और भागवत पढ़ा। जो किसी रूप में आसक्त नहीं हुए, नग्न अबलाओं के रूप में आसक्त नहीं हुए, दृष्टि नहीं गई, ऐसा व्यक्ति कृष्ण के रूप का दीवाना हो गया। तो भगवान का रूप कुछ और है। आत्माराम मुनि गण भी भगवान के गुणों को सुन करके अपना पूर्व मत छोड़ करके भक्त हो जाते हैं, अहैतुकी भक्ति करते हैं, कोई कामना रह करके नहीं, भगवान से प्रेम करने लगते हैं, करने लगते हैं। और आज तक सुखदेव गोस्वामी उसी प्रेम के नशा में घूमते रहते हैं। उनको वास्तव में कभी स्मरण नहीं होता है कि मैं वस्त्र नहीं पहना हूं, भगवान के ध्यान में इतना मग्न रहते हैं, इतना मग्न रहते हैं कि कौपीन तक पहनने की सुधि नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उनको वस्त्र नहीं है, लेकिन वो क्या करें, कोई ध्यान ही नहीं है। जहां चलते हैं अभी भी मुनियों की सभा में, चाहे राजसीय सभा में, कहीं भी नग्न बैठते हैं, तो ध्यान ही नहीं जाता है कि मैं नग्न हूं। यदि कोई यह प्रश्न करे कि भागवत की कथा कहते समय तो बहुत से स्त्री पुरुष का वर्णन कर रहे हैं और सब करते हैं, लेकिन वास्तव में सुखदेव गोस्वामी ये सोचते हैं कि क्या संग्रह करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भजन करना है, स्मरण करना है, बाकी ये संग्रह करना है, कई सेट कपड़ा रखना, कई सेट जूता रखना, उसका आयरन करो, ये घड़ी बनाओ, ये रखो, ये रखो। अगर वास्तव में नग्न रहने से काम चल जाए तो फालतू चीजों की क्या जरूरत है। ये जीवन के लिए भार है वास्तव में। सत्यम छितम की कसितो प्रयास है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब जमीन सोने के लिए सुलभ हो तो बेड की क्या जरूरत है। जमीन पर भी कितने जीव सो लेते हैं, गाय भैंस ये सब फर्नीचर पर थोड़े सोते हैं, ये सब पलंग पर तो सोते नहीं है, और मनुष्यों से भी अधिक बलवान होते हैं देखा जाता है। गमछा भी नहीं बिछाते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं, और कौपीन भी नहीं बांधते हैं। देखिए जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। पहले ऋषि राजा महाराजा वन में चले जाते थे तो वे पेड़ की छाल या हरण का चर्म कहीं से मिल गया लपेट लेते थे, या कोई पुराना वस्त्र कहीं नहीं तो ऐसे होंगे। इस मनुष्यों ने अपने जीवन को इतना आर्टिफिशियल कर लिया है, इतना आर्टिफिशियल कर लिया है कि उसी चक्कर में फंस गया, भजन क्या करेंगे। ये मेंटेन करो, ये करो, ये करो, ये करो। सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल फ्री है और उनका नग्न रहना ही अच्छा लगता है। शायद सुखदेव गोस्वामी कभी वस्त्र पहने तो उस दिन ऋषि लोग हंसेंगे कि क्या कर रहे हैं, क्यों वस्त्र पहन लिए। अपना अपना श्रृंगार है, अपना अपना वस्त्र है। भगवान शिव का वस्त्र है बाघम्बर लपेट लेते हैं, बाकी ऊपर कोई जैकेट या दुपट्टा नहीं डालते कभी नहीं, चाहे जाड़ा का दिन हो चाहे गर्मी का दिन। और वे अपने लिए कहीं कोई घर नहीं बांधे। अपने भक्तों को तो सोने की लंका भी दे देते हैं, अपने भिखारी भोला अनका के दानी है, वो अपने भिखारी भोला है दूसरे को दान देते हैं। हैं ईश्वर जगत के, लेकिन देखिए शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण के भक्ति में ऐसे निसंग्रह रहना चाहिए। न अपने लिए घर बांधे हैं और न तो एक दिन भी वस्त्र सिलाए होंगे। ससुराल में दुल्हा बनकर गए थे उस समय भी यही भेष था, थोड़ा ताजा रख लगा लिए थे चिता की और बस किए मुंडमाल लगा लिए थे। लड़के गए देखने बारात, रामचरित मानस वर्णन में जब बच्चे गए बारात देखने के लिए तो दुल्हा को देखते ही घर भाग चले और रोते हुए कांप रहे थे, कांप रहे थे। तो माताएं पूछती क्यों क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हैं। वो तो बोली नहीं निकल रही थी बच्चों की। दूसरी स्त्रियां कहती हैं कि जमकर धार की धू बरियाता, ये जमराज की सेना है कि बारात है। ऐसे बराती चले थे, को मुख ही ने विपुल मुख का, किसी किसी को मुंह बिल्कुल नहीं था, किसी के शरीर में भूतों के मुंह नहीं था और किसी किसी को बहुत मुंह था, इधर भी मुंह था, इधर भी मुंह था, बेढंगा लग रहा है। और उसमें वस्त्र तो कोई पहना ही नहीं था, जब दुल्हा साहब ही नहीं पहने हैं तो दूसरे का पहने। वो डर गए बच्चे और घर में स्त्रियां रोने लगी और पार्वती जी की मां तो लगी रोने की, हाय रे नारद, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने क्यों हमारी पुत्री को कह दिया कि शिव के लिए तपस्या करो, शिव तुम्हारे वर हैं, ऐसा तुम्हारे हस्तरेखा में बिखा गया। वास्तव में नारद जी ने बताया यही उसका काम है, देखो चित्रकेतु को उपदेश देकर के घर से भिखमंगा बना दिया, दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश किया कि वे घर लौटे ही नहीं, दक्ष सुतन उपदेश न जाए तीन अपनी भवन न देखा आई। ये सब स्त्रियां कह रहे, रो रही है सुनैना जी, हाय हमारी बेटी के भाग में यही लिखा था, यही लिखा था, ऐसा कंडम दुल्हा। अच्छा जब भगवान शिव को भोजन दिया गया लोक में लोग गाते हैं तो भागवत में तो नहीं है, लोक कहते हैं। शिव जी को जब पूरी जिलेबी और कई प्रकार के भोग दिए गए तो खा ही नहीं रहे थे। पता चला, पूछा गया दुल्हा से, बोलो बोलो क्या चाहिए। लोग पूछते हैं ससुराल में वास्तव में, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। तो दुल्हा धीरे से बोला, भांग धतुर है। भांगी है धतुर कहां पाए। अब लोग चिंता में पड़ गए, भांग धतुर कहां से पाए, रात के समय कहां पाए कहां पाए कहां पाए। कोई नहीं ले रहा था, कोई पूछ रहे थे क्या चाहिए, तो सवारी में क्या चाहिए क्या चाहिए। तो सोच रहे होंगे कि हाथी घोड़ा चाहिए, हाथी मांगेगा घोड़ा मांगेगा चाहे मोटरसाइकिल मांगेगा। तो दूल्हा बोला कि हमको 20 साल का बूढ़ा बैल चाहिए। तो ऐसा बैल था ही नहीं, बूढ़ा बैल कहा पाई, वो मानत नहीं। ये है भगवान की लीला, वो दिखाते हैं जगत को कि मनुष्य को कम से कम संग्रह करना चाहिए। वास्तव में भगवान शिव भांग धतुर नहीं खाते हैं, तो मजाक में कहा जाता है। वो केवल एक बार विष पिए थे, समुद्र से निकले हुए विष को पिए थे जगत की रक्षा के लिए। लेकिन आजकल के लोग शिव जी को अपने दल में इसलिए कर लेते हैं कि उनको खुल करके गांजा चरस पीने को मिले, कोई कुछ कहने ना पावे। अगर कहेगा तो कह देंगे शिव जी हमारे लीडर है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि भगवान शिव ये सब खाते पीते हैं। वैष्णवानाम जथा शंभु, समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ, जो विष्णु का प्रसाद ही खाते रहते हैं, ये सब गलत चीज नहीं खाते हैं। पर भगवान शिव के जीवन से शिक्षा ले जाती है कि कम से कम संग्रह करके और भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। है जगत के महेश्वर महाईश्वर, लेकिन कोई संग्रह नहीं। और उनकी पत्नी ऐसी पतिव्रता है कि एक दिन भी शिव जी से कभी मांग नहीं किया, कभी रिक्वेस्ट नहीं किया कि क्यों नहीं आप भी एक फ्लैट बना लेते हैं, कुछ तो बना लीजिए। एक बरगद का वृक्ष है कैलाश में, बहुत घना है, उसमें एक भी पक्षी नहीं बैठते हैं, बीत नहीं पड़ते हैं, सूरज का प्रकाश नहीं आता, उसी के नीचे रहते हैं, उसी के नीचे कथा कहते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, रहते हैं। पत्नी भी उसी टेंट में रहती, मतलब उसी बरगद के नीचे रहती है, कोई प्राइवेट रूम नहीं। इस तरह से रह रहे हैं, शिक्षा देते हैं कि ऐसे रहना चाहिए। तो भगवान शिव भी एक आत्माराम है, सनकादिक ऋषि आत्माराम है, सुखदेव गोस्वामी आत्माराम है, आत्मा में रमण करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। तो ऐसे आत्मा रामों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। तो गोपियों के साथ वे रमण करने लगे, उनके विषय में गीत गाना, उनका आलिंगन करना, चुंबन करना, उनके साथ घूमना, आलाप करना, नृत्य करना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान अब आत्मा राम नहीं है, अपने स्वरूप से गिर गए हैं, अब बाह्य स्त्रियों में सुख मान रहे हैं, उनके साथ बोलना चलना इसमें आनंद मान रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते आत्मा राम, उस समय भी आत्मा राम ही हैं, क्योंकि गोपियां उनकी आत्मा हैं, उनका ही स्वरूप है, अपने को ही उन्होंने प्रकाशित किया है गोपियों के रूप में, ये स्वरूप शक्ति का विलास है। तो आत्मा राम अरि रमत, आत्मा राम रमण करने लगे, रमाने लगे गोपियों को, उन्हें सुखी करने लगे। अरि रमत का प्रश्न पद में है कि वे रमाने लगे, अर्थात गोपियां बहुत दुखी थी, दुखी थी तो उनको सुखी करना, उनको अनुकूल वचन बोलना, उनके हस्त आदि का स्पर्श करना, उनके सिर का स्तन का स्पर्श आदि करना, यह बहुत आवश्यक था। ध्यान रखना चाहिए कि आत्माराम शिरोमणि भगवान के लीला है, तो उनका चित्त बिल्कुल ही बाह्य नहीं हुआ था, बिल्कुल बाह्य नहीं हुआ था। और कदाचित अगर मान लिया जाए कि गोपियों के रूप में गोपियों के प्रेम चेष्टा में भगवान का मन चला भी गया तो गोपियां उनसे भिन्न नहीं है, पर कोई लौकिक दृष्टि से भगवान में दोषारोप न करे इसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आत्मा राम हरि रमत, आत्मा राम रमाने लगे गोपियों को। भगवान सदा अपने स्वरूप में रहते हैं, भगवान हंसे गोपियों की बात सुन करके और उन्हें बहुत दया आई, दया बस वे अपने को जितनी गोपियां थी उतने रूप में प्रकट कर लिए, पर एक गोपी दूसरे गोपी के साथ कृष्ण हैं इस रहस्य को नहीं जान पाई। एक एक गोपी को प्रसन्न करना है, बेचारी रो रही थी, बार बार विलख रहे थे कि हम घर छोड़ करके आई हैं, हम नहीं जा सकती हैं, तो भगवान ने अपनी प्रियाओं को एक एक के साथ एक हो करके फिर अश्रु मार्जन किए और कई तरह के चाटू वचन बोले कि ओहो तुम इतने से दुखी हो गई, मैं तो केवल कुछ मजाक कर रहा था, सुनना चाहता था कि तुम कैसे बोलती हो, तुम्हारी क्या दशा होती है, हे प्रिय मैं हृदय से तुमसे प्रेम करता हूं, यह कहना और केश संवार्जन करना स्वर्ग संवारना। और जैसे मैं सवेरे वर्णन किया था जोगेश्वरेश्वर हैं, जोगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, तो क्षण भर में अचिंत योग शक्ति से और वृंदा देवी की व्यवस्था से सब कुछ उत्पन्न कर लिए वहां पर, श्रृंगार रस के जितनी भी अनुकूल सामग्रियां हैं वो सब कुछ वृंदावन में प्रकट हो गया। जैसे माला के विषय में कहा गया कि वैजयंती माला वे पहने, तत्काल ही या तो गोपियों ने बना करके पहना दिया अथवा वृंदा देवी ने पहना कर बना करके पहले से रखा था, क्षण क्षण में कृष्ण की माला बदलती रहती है। वही जयंती माला में पांच रंग के फूल रहते हैं, पंचवर्ण पुष्प ग्रथिता माला वैजयंती माला। भगवान श्री कृष्ण को यह बहुत पसंद है, अनेक वर्ण के फूलों की माला वे पहनते हैं, वैजयंती माला पहनते हैं ये तो सब जगह जाना ही जाता है। और माला पहनने में श्री कृष्ण सबसे आगे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए भक्त लोग उन्हें माला पहनाया करते हैं। कहीं भी जहां प्रसिद्ध मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का तो देखेंगे कि उस मंदिर के आसपास फूलों की बिक्री बहुत होती है, माला की बिक्री होती है। भगवान को माला देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि और दूसरे लोग तो पहनाए ही हैं तो हम क्या लेकर करें, दूसरे लोग पहना दिए हैं तो हम क्या करें। वो क्षण क्षण में माला पहनते हैं और भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं, यह वास्तविक बात है। कोई भक्त अगर माला लेकर के जा रहा है भगवान के पास और भक्त देखे कि पुजारी ने भगवान को पहनाया नहीं, निकट रख दिया, लेकिन बात वास्तविक यह है कि भगवान उसको पहन लेते हैं, उस भक्त के भाव को देखते हैं, वो पहनते हैं, स्वीकार करते हैं, इसलिए माला ले जानी चाहिए, पुष्प अर्पित करना चाहिए भगवान को। इस तरह भगवान ने गोपियों को माला पहनाया और सब श्रृंगार किया और गोपियों के बीच में घिरे हुए भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि कृष्ण के संग होने से गोपियां सुंदर लग रही थी, मतलब केवल ऐसी ही बात नहीं है, बल्कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे थे। ताभी समेताभिरुदार चेष्टितः प्रिये क्षणत फूल मुखी विरचितः उदार हास द्विज कुंद दिधिति व्यरोचतैनांक योदुभिवृतः। प्रिय क्षणत फूल मुखी विरचितः, जब प्रियतम श्याम सुंदर बहुत स्नेह भरी दृष्टि से गोपियों की तरफ देखे, प्रेम पूर्ण चितवन से देखे, उससे गोपियों का मुख खिल गया आनंद के कारण कि भगवान प्रियतम हमें स्वीकार किए। वास्तव में प्रीति का या द्वेष का जो मुख्य साधन है प्रकट करने का, प्रेम को और द्वेष को प्रकट करने का मुख्य मार्ग है नेत्र। जब गोपियां भगवान के पास आई तो भगवान उनके तरफ खुलकर देख नहीं रहे थे। उन्होंने कह दिया, ओ खेद है कि मैंने ऐसा राग बजा दिया, हमको ध्यान नहीं था कि तुम्हारे कान में गिर जाएगा, क्या करूं, बांसुरी भी अजीब गाती है, हमारी गलती है, हमको गाना चाहिए था तो ऐसे थोड़े दूर पर आवाज को करना चाहिए था, भूल से वॉल्यूम ऊंचा हो गया और ब्रज में गीत पहुंच गया। भगवान ये कह रहे थे, वो गलती हो गई, मैं गान कर दिया, ये कर दिया, जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ, पीछे से कोई आ जाएगा तो मेरी बहुत बदनामी होगी, तुम लोगों की भी बहुत होगी, इसे जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो उस समय आंखें भगवान की उपेक्षाजनक थी, भीतर से नहीं, बनावटी, नहीं नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए, देख नहीं रहे थे ठीक से। लेकिन जब गोपियों ने प्रार्थना किया भगवान से, तब वो बिल्कुल स्नेहमय दृष्टि से, प्रेमपूर्ण चितवन से देखने लगे। तो केवल प्रियतम के प्रेमपूर्ण दृष्टिपात से गोपियों के हृदय का दुख दूर हो गया और उनका मुख खिल गया। पहले मुरझाया था मुख, पहले वो रोई थी यह आशंका करके कि प्रियतम हमें वापस घर भेज रहे हैं, हाय हाय हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और वे इस योजना में थे कि हम अब मरेंगे यहां। तो जिस व्यक्ति के मनोरथ पर इतना बड़ा आघात हो जाए, जिस मनोरथ का पोषण वर्षों से किया हो और जिससे मनोरथ किया है वही व्यक्ति यदि आघात करे तो मुख तुरंत मुरझा जाएगा, कुम्हला जाएगा। तो गोपियों का मुख कुम्हला गया था और रोई थी, इसलिए भी फीका हो गया था। और भगवान ने प्रेम से देखा और अश्रु मार्जना आदि किया तो उनका मुख खिल गया, प्रिय क्षरत फुल्ल मुखी, उत्फुल्ल मुखी हो गई, खिल गया मुख। और ऐसे गोपियों से भगवान घिरे, सबके बीच में हुए। उस समय भगवान उदार चेष्टा कर रहे थे। उदार का अर्थ है परमानंद दान करने वाली चेष्टाएं। उदार का अर्थ होता है बहुत बड़ा दानी, अथवा उदार का अर्थ होता है आनंद देने वाला, देने वाली चेष्टा, आनंददार। उदार चेष्टी का भगवान चेष्टा करने लगे, क्या कि उदार चेष्टा। उदार चेष्टा में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं, परम सुख प्रदानी सर्वोत्कृष्टानी चेष्टितानी। क्या क्या चेष्टितानी? स्पर्शन, स्पर्श करना गोपियों का, उनके सिर का या उनके कंठ का, उनके गाल का, स्तन का, हाथ का स्पर्श करना, पुष्पाद्यर्पण और पुष्प आदि अर्पित करना, कोई सुगंधित चीज देना सुनने के लिए, या पुष्प धारण कराना उनके कानों में, उनके जूड़े में, उनके गले में पुष्प को ठीक करना, और कटाक्ष छेपड़ा देनी, कटाक्ष छेपड़ आदि में, और तिरछी चितवन से देखना, ये सब भगवान की उदार चेष्टाएं। गोपियों को परमानंद समुद्र में मग्न कर रही थी ये सब चेष्टाएं। भगवान का स्पर्श करना, पुष्प आदि अर्पण करना, या कटाक्ष से देखना इत्यादि, और मधुर वचन बोलना, इसको चेष्टा कहो, उदार चेष्टी कहो। उदार हास द्विजकुंद दीधिति, और भगवान खुलकर हंस रहे थे, अपनी प्रियाओं के बीच में वे खूब खुलकर हंस रहे थे। उदार हास, उदार हास का अर्थ कभी कभी ठठाकर हंसते थे, बहुत अच्छे से हंस रहे थे गोपियों को सुख देने के लिए। तो उस समय द्विज कुंद दीधिति, उनके द्विज भगवान के सुंदर सुंदर दांत कुंद कली के समान चमक रहे थे। दीधिति का अर्थ है प्रकाश। भगवान जब हंसते हैं और हंसते समय उनके दांत थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं तो उनका हास्य और अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है हंसने में, खुल करके हंस रहे हैं। कभी कभी श्री कृष्ण केवल स्मित करते हैं, स्मित का अर्थ है मुस्काना, हंसने में और मुस्काने में अंतर है। मुस्काने का मतलब है कि दांत नहीं दिखाई पड़ता है, दांत न दिखाई दे और आनंद की रेखा चेहरे पर हो जाए तो इसको मुस्कान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का मौन वसलित तो बहुत प्रसिद्ध है। यदि कोई किसी उपाय से अगर कृष्ण के बस में नहीं हो पाता है तो मुस्कुरा करके देख देते हैं, बस बस में हो जाता है। ब्रजभाषा के एक पद में रसखानी जी कहते हैं कि कोई गोपी कह रही है कि देखो कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उसका प्रतिकार मेरे पास है, कानन दय अंगुली रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजाई है, अगर वे राग छेड़ेंगे मुरली पर तो मैं कान में अंगुली डाल लूंगी, सुनाई नहीं पड़ेगा तो बच जाऊंगी उसके प्रभाव से, मतलब बांसुरी मुझे पागल नहीं बना पाएगी क्योंकि मेरे पास उपाय है। आजकल तो रबड़ भी मिलता है, कान में डाल दीजिए तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कहते कानन दय अंगुरी रही बो, कानों में अंगुली दे करके रहूंगी जब ही मुरली ध्वनि मंद बजई, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गई ही तो गई। अगर श्री कृष्ण गोवर्धन पर चढ़ करके और गाएंगे और तब भी मैं नहीं सुन पाऊंगी, लेकिन एक चीज की दवा नहीं है सखी मेरे पास, तेर कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल को कितनो समझाई है, माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जय न जय न जय। लेकिन अगर वो आएगा गली में और मुस्का करके नंद का छोरा देखेगा तो हे सखी हे माई मैं कह देती हूं फिर नहीं संभाला जाएगा, नहीं संभाला जाएगा, नहीं संभाला जाएगा, मैं तो कृष्ण के साथ चल ही दूंगी, चाहे पति कुछ कहे, चाहे सास कुछ कहे, मरे कुछ भी करे, मैं अब उस समय अपने को नहीं संभाल पाऊंगी। माई रिवार मुख की मुस्कान संहारी ने जय ही जय। किसी गोपी पर देख करके श्याम सुंदर जब मुस्कुराते हैं तो वह महामोहन जादू महाआकर्षण उससे बच पाने गोपी के लिए असंभव है। तो कान में तो अंगुली देकर के रहूंगी लेकिन आंख पर पट्टी देकर के गंधारी की तरह कब तक रहूंगी। पट्टी देने से काम होगा नहीं, काम धंधा करना है और सब करना है, जीवित ही अंधा बनकर कैसे रहूंगी। कान में उंगली डाल दूंगी लेकिन आंख को कैसे बंद करूंगी। और वो अचानक जानता है नंद का छोरा, वो आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, इसीलिए आज ही कह रही हूं। तेर कहो सिगरे ब्रज लोगनी, ब्रज के सब लोगों से आज ही मैं कह रही हूं कृष्ण को इधर मत आने दो, कृष्ण को इधर मत आने दो, उधर रखो वन के तरफ या खिड़क के तरफ, लेकिन इधर आ जाएगा और मुस्कुरा करके देखेगा तो फिर हमको दोष मत देना, हमसे ये नहीं सहा जाएगा, मतलब मैं कृष्ण के साथ हो ही जाऊंगी चाहे दुनिया कुछ भी कहे। भगवान के मुस्कान में यह जादू है, हास में हासो जनन माध करी च माया। भगवान कपिल देव कहते हैं कि भगवान की जो हंसी है जनन माध करी महामोहिनी शक्ति है और भक्तों में उन्माद पैदा कर देती है। जन उन्माद करी, वह भगवान के हंसी को माया कह रहे हैं, इस माया शक्ति को माया नहीं, इसको माया इसलिए कह रहे हैं कि मोहिनी शक्ति है भगवान के हंसी में। और भगवान श्रीकृष्ण का ये स्वभाव है, जहां भी आप उनकी मूर्ति देखिए फोटो देखिए तो वे हंसते हुए रहते हैं, केवल एक ही बार रोते हैं मुखल बंधन में बस, उसके अलावा कभी रोते हुए नहीं देखे जाते, हंसते हुए देखे जाते। सांवरो घनश्याम तुम प्रेम के अवतार, हंसते रहते हैं और उनको देख करके दूसरे लोग हंसते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि भगवान ने दुनिया बनाया है? तो हाँ बनाया, सब उनके बेटा है ना? हमने कहा हाँ सब उनके पुत्र। तो जब बेटा इतने दुखी है, जन्म मरण में पड़े हुए हैं, तो बाप हंस क्यों रहा है? वो क्यों खुश है? उसको भी इसका मतलब रोना चाहिए। उसके कहने का अर्थ है, जब उसके पुत्र उसके संतान सब रो रहे हैं तो भगवान इतना क्यों खुश है? इसका मतलब कि बच्चों के दुख का ध्यान उनको नहीं है। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है। अगर वो चाहें भी कि मैं दुखी हूं तो हो ही नहीं सकते। तो भगवान का स्वभाव है, कैसे बदला जा सकता है भगवान का स्वभाव? जैसे सूरज भगवान अगर चेष्टा करे कि हमारे चारों तरफ अंधकार हो जाए, या मैं रात को देखना चाहता हूं रात कैसी होती है, यदि वो प्लान करें और कोई कहे ठीक है हम आपको रात्रि से मिला देंगे रात, तो जो जहां जाएंगे तो वहां करोड़ों योजन तो पहले से ही प्रकाश छा जाएगा, तो रात से भेंट कैसे होगी? आज तक भगवान सूर्य को रात से भेंट हुई ही नहीं। जिस रात की गोद में सारे मनुष्य सोते हैं, भगवान सूर्य देखे भी नहीं आज तक रात कैसी होती। तो संसार के दुख भगवान श्रीकृष्ण के पास पहुंच ही नहीं सकते, उनके स्वभाव है। अगर ईश्वर रोने लगे तब दुनिया किसकी शरण में जाएगी बताइए? भगवान ही दुखी हो जाए। लोग बिल्कुल भगवान को मनुष्य जैसा समझ करके ऐसा प्रश्न किया करते हैं कि भगवान भी हाय हाय करें, छाती पीटें, या कोई हॉस्पिटल गया हो तो भगवान भी कुछ बीमार हो जाएं, ये करें वो करें। आज तक भगवान नारायण एक दिन भी बीमार नहीं पड़े। उनकी बात छोड़ दिए, वैकुंठ में कोई बीमारी है ही नहीं, बुढ़ापा है ही नहीं, कुछ नहीं, काल का कोई प्रभाव नहीं। इस संसार में भगवान कुछ लीला करते हैं बीमार होने की, जैसे जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी लीला करते हैं, उनको बुखार आ जाता है, अपच होता है, इतना ज्यादा खाते हैं कि क्या हो 52 बार दिन में खाते हैं वे। खाते क्या है, प्रभु इतने दयालु हैं कि उतना न खाएं तो और लोगों को मिलेगा नहीं, इतना खाते हैं, खा करके मटके में तो छोड़ ही देते हैं, सब दूसरे लोग खाते रहते। पर भक्त लोग भगवान की इस लीला का अनुभव करते हैं कि उनको अपच होता है, और जब अपच होता है तब डाइजेस्ट करने के लिए जो दवाई होती है वो भी भोग के बराबर ही बहुत अमाउंट में दवा दी जाती है। उनका सब कुछ विलक्षण, दवा भी उतना ही भारी भारी बर्तन में दिया जाता है। वह उनकी लीला है। वास्तव में भगवान तो अनामय है, तो चिन्मय श्री विग्रह है, भगवान कैसे बीमार हो सकते हैं? तो भक्तों को सेवा का अवसर देते हैं, इसके लिए बीमारी की लीला करते हैं। ये भगवान की विचित्र लीला है। ये अच्युत है, यहां अच्युत शब्द का अर्थ है श्रीपाद सनातन गोस्वामी एक ये भी कर रहे हैं कि प्रत्येक गोपी के पास भगवान है, अच्युत है। ऐसा नहीं कि कोई गोपी कृष्ण के बिना है, सबका अनुभव ये हो रहा है कि श्रीकृष्ण मेरे साथ है। श्रीकृष्ण है वास्तव में एक ही, लेकिन वो इतना तेज है, इतना स्फूर्ति है उनमें कि क्षण क्षण में वे गोपियों के साथ ही रहते ही, जैसे आलाप चक्र घुमाते हैं हम लोग, लकड़ी का जलता हुआ सीरा ऐसे घुमाइए तो लगता है कि निरंतर स्प्रिंग जैसा बन गया है एक, और एक स्थान में एक ही जगह रहता है, लेकिन इतना तेज घुमाया जाता है कि लगता है कि वो कंटिन्यूअस एक रिंग बन गया है। रिंग बना नहीं है। तो जब प्राकृत वस्तु को तेज घुमाया जाए तो कंटिन्यूअस एक स्थान पर दिखाई देता है, तो भगवान ने दिया, अकेले होते हुए प्रत्येक गोपी के पास रह रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इतना तेज गति से चलते हैं, उतना तेज गति से बिजली नहीं चल सकती है, विद्युत प्रवाह नहीं चल सकता है। मन की गति से भी वे तेज चलते हैं, बुद्धि से भी तेज चलते हैं। तो एक प्रभु प्रत्येक गोपी के साथ विद्यमान है, इसलिए उनको यहां अच्युत कहा गया। अथवा अपने सौंदर्य माधुर्य आदि गुणों से बिल्कुल च्युति रहित हैं। उदुभी एरान के इव व्यरोचत, जैसे चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं, वैसे भगवान श्रीकृष्ण गोपियों के साथ सुंदर लग रहे हैं। ये भगवान अच्युत हैं, सारा सौंदर्य उनमें पहले से ही है, अनंत अशेष माधुर्य के निधान हैं, परंतु श्रीकृष्ण कब सबसे अधिक सुंदर लगते हैं? जब वो गोपियों के साथ रहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा यदि अकेले आकाश में उगे तो वह उतना अच्छा नहीं लगेगा, जो उसके आसपास ताराएं रहते हैं, तारे रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है चंद्रमा। ये देखा गया है, अनुभव है। तो जैसे ताराओं से घिर करके एड़ांक, एड़ांक माने चंद्रमा, एड़ का अर्थ है हरिण और अंक का अर्थ है कलंक धब्बा चिन्ह, जिसमें मृग का चिन्ह हो या सस का चिन्ह हो, एड़ांक या शशांक। तो जैसे चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होता है, वैसे भगवान अपनी प्रेयसियों के साथ होने पर बहुत सुंदर लग रहे थे। भगवान अकेले उतना सुंदर नहीं लगते, अपनी शक्तियों के साथ होते हैं, प्रेयसियों के साथ होते हैं तो अच्छा लगते हैं। और भगवान श्रीकृष्ण का ऐसा स्वभाव है, वो अकेले बहुत कम रहते हैं, या तो किसी गाय के साथ रहते हैं, मयूर के साथ रहते हैं, सखा के साथ रहते हैं, या गोपियों के साथ रहते हैं, राधा रानी के साथ रहते हैं। ये भगवान का स्वभाव, यही अच्छा लगता है। सबसे अधिक कब ये सुंदर लगते हैं? गोपियों के साथ। इसी से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं व्यरोचत, वी अरोचत, विशेष सुंदर लग रहे हैं भगवान गोपियों के साथ। तब वे भ्रमण चालू किए, जिस स्थान पर गोपियों से मिले थे बंसी भट्ट में, वहां से वे चलने लगे, चले। उपगीयमान, गोपियां भगवान की कीर्ति गा रही थी। अप्राकृत जगत का ये स्वरूप है, गान सहज निकलता रहता, सहज। जब व्यक्ति सुख में रहता है तो गाता है। गोपियां भगवान की लीलाओं को गाने लगी, तत्कालिक लीला को, उनके सौंदर्य को, उनके चेष्टाओं को, उनके स्वभाव को गाने लगी, गाने लगी। स्वभाविक उपगीयमान समस्त गोपियां मधुर स्वर से भगवान का गीत गाने लगी। यह एक परम सुख है, चाहे प्राकृत जगत हो चाहे अप्राकृत जगत हो। इस जगत में भी देखा जाता है कि क्या ये सिनेमा आदि में क्या होता है, स्त्रियां नायक का गुण गाती हैं और नायक उनका गुण गाता है, बस यही तो है और कुछ नहीं है ना, यही सब भरा पड़ा है। और ये दो दिन का माटी का धुंधा है, वृद्ध होकर के गिर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन इसी रूप में नाना प्रकार से दे देकर के गाते हुए जीवन बीत रहा है। और वो तो बिता रहे हैं, वो तो नफा में है, कमाते हैं। ये बुद्धू लोग जाकर के जो देखते हैं, इनकी क्या गति होगी, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। गोपियां भगवान के बारे में गा रहे हैं और भगवान उनके सौंदर्य आदि को गा रहे हैं। उपगीयमान उद्गायन, भगवान उद्गायन, उच्च स्वर से भगवान गा रहे हैं। मीठी लगे तेरी गारी सुन बरसाने वाली, मान लीजिए वो गा रहे हैं कि तुम्हारी गाली बहुत अच्छी लगती है, वो गा रहे हैं, सौंदर्य गा रहे हैं, राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, उनके भक्ति भाव का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कभी कभी गाते गाते यहां तक कहते हैं, हे श्रीराधे तुम अपने चरणों की शरण में मुझे रखो, यहां तक गाते हैं। गीत गोविंद में भी यही है, स्मर गरल खंडनम मम शीर्ष मंडनम देह ते पद पल्लव मुदार। हे श्री राधे, तुम अपने चरण को हमारे सिर पर रख दो, मेरा ये मनोरथ है। राधा रानी इतना प्रेम करती हैं भगवान से, इतना प्रेम करती हैं कि उनके प्रेम के भगवान ऋणी हैं और दास भाव से राधा रानी की सेवा करते हैं, उनको स्वामिनी मानते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को दास। कोई भक्त मांग रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से यहां तक मांगते हैं कि हे प्रिया जी, हे किशोरी जी, आप हमको ब्रज से बाहर मत कीजिए। मथुरा में जाकर के रो रहे हैं कि कौन सी मैंने गलती किया था कि आपने हमको ब्रज से बाहर कर दिया। मथुरा में रो करके ये संदेश भेज रहे हैं राधा रानी, किस अपराध से ब्रज से बाहर कर दिया। ये है गीत, और राधा रानी के सौंदर्य का गीत जब श्याम सुंदर गाते हैं तो अद्भुत है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, राय रमानंद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सबसे उत्तम गेय क्या है, क्या गाना चाहिए मनुष्य को। तो राय रमानंद जी कहते हैं कि राधा कृष्ण के केली का गान करना, यही सबसे उच्चतम गान है। राधा श्याम सुंदर जब मिलते हैं, दास करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, गाते हैं, उसी को गाना चाहिए, सबसे उच्चतम गान है। जो गोविंद लीला में गीत गोविंद में गाया गया है, जयदेव महाकवि ने गाया है खुलकर, यही है गान, राधा कृष्ण केली गान, यही सर्वोच्च गान है। तो यहां पर देखा जा रहा है भगवान गा रहे हैं, उद्गायन, उद्गार से ऊंचे स्वर में गा रहे हैं। गाना एक बहुत बड़ा सुख है अपने आप में, सबसे बड़ा सुख यही है। जो सुख हो तो गोपाल वही गाए, सूरदास जी ने कहा है, जो कृष्ण को गाने में सुख होता है वो कोटि कोटि जप तप करने से वो सुख नहीं होता है, जो गाने से सुख होता है। जो सुख हो तो गोपाल वही गाए। यहां तक कहते हैं किसी बंध्या स्त्री को, बांझ स्त्री को पुत्र मिल जाए, जन्म ले ले, और उसे जितना सुख होगा उससे कोटि कोटि गुना कृष्ण को कीर्तन में सुख मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने प्रियतम के सौंदर्य आदि गुण को गोपियां गा रही हैं और प्रियतम श्याम सुंदर अपनी प्रेयसी गोपियों का गुण गा रहे हैं। उपगीयमान उद्गायन वनिता सतजुथप, सैकड़ों वनिताओं के जुथ के अधिपति हैं भगवान। जुथप नायक शिरोमणि, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त भगवान सैकड़ों हजारों वनिताओं के बीच में हैं। जुथप, और सिर्फ सनातन गोस्वामी जी एक अर्थ करते हैं कि सैकड़ों वनिताओं के, नवजुवतियों के झुंड में भगवान हैं और उन्हें पी रहे हैं। जुथ प का अर्थ है पीना, पी रहे, मतलब भगवान गोपियों का चुंबन कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, अधरामृत पी रहे हैं। इस तरह आत्मा राम शिरोमणि भगवान गोपियों के आलिंगन आदि से अपने को सुखी अनुभव कर रहे हैं कि लालसा। पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गोपियां भगवान से भिन्न नहीं हैं, वे अपने ही आत्मा में रमण कर रहे हैं, अन्य वस्तुओं में आसक्त नहीं हो सकते। मालाम विभ्रत वैजयंतीम व्यसरन मंडयन वनम, वैजयंतीम मालाम विभ्रत, अति सुंदर वैजयंती माला पहने हैं और वृंदावन को अलंकृत करते हुए व्यसरत विचरण कर रहे हैं। विचरण करना इसका अर्थ है कि गोपियां उनके साथ विचरण कर रही हैं, कभी फूल को तोड़ते हैं माला बनाने के लिए, किसी प्रिया के जुड़े में खोजते हैं उसको, कभी वृंदावन की शोभा को देखकर गाने लगते हैं, फिर गोपियां गाती हैं और देखते देखते चलते हैं तो गोपियों का गुण गाने लगते हैं। यही है नित्य लीला भगवान की, वहां पर कोई सांसारिक दुख द्वंद का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। परम पुरुष अपने धाम में, अपने वृंदावन में इस प्रकार अपनी प्रेयसियों के साथ विहार कर रहे हैं। मालम विभ्रत वैजयंती, यद्यपि और भी अलंकार भी धारण किए हैं, लेकिन उन अलंकारों का वर्णन सुखदेव को समय नहीं कर रहे, केवल वैजयंती माला का वर्णन कर रहे हैं। नहीं तो आगे चल करके वर्णन है कि बलया नाम नुपुराणाम, बलय के ध्वनि हो रहे थे, वो कंकड़ लगाई थी, सोने की चूड़ियां, गोपियां भी सब झनझनझन बोल रहे थे, और पायजेब रसलीला में आगे वर्णन आएगा, तीसरे अध्याय में इसका वर्णन है। तो क्यों वैजयंती माला का ही वर्णन कर रहे हैं और अलंकारों का क्यों नहीं वर्णन किए? तो भगवान श्री कृष्ण जितनी गोपियां थी उतने हो गए थे आगे बाद की लीला में, और भगवान श्री कृष्ण भी कंकड़ पहने थे, पुरुषोचित जो बलय होता है चूड़ियां होती है वो भी पहने थे, और घुंघरू भी बांधे थे पैर में, और कमर में करधनी जिसमें छोटी छोटी घंटियां होते वो भी बांधे थे। तीन वाद्य मुख थे रासलीला में, जो गोपियों के शरीर पर और श्रीकृष्ण के शरीर पर ही थे, और कोई बाजा रहे या न रहे यही तीनों बजते रहते थे, नूपुर बलय और किंकणी। इनका कोई उल्लेख नहीं कर रहे हैं अभी, वैजयंती माला का उल्लेख कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अभी अभी ताजी ताजी माला पहनाई गई है, और घूमने में फिरने में भगवान ने अभी बलय और नूपुर का प्रकाशन नहीं किया है, यह अर्थ है। जब नाचना होगा तो सब प्रकाशित कर लेंगे अपने आप, उनकी योग शक्ति है, अचिन शक्ति है, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अभी माला पहने हैं, माला हिल रही है, सुखदेव गोस्वामी को ये ध्यान में आ रहा है, इसीलिए कहते हैं मालम विभ्रत वैजयंती बेसरन मंडयन वनम, उस वन को अलंकृत करते हुए भगवान घूम रहे हैं। वृंदावन अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन वृंदावन की सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? कृष्ण, कृष्ण वृंदावन में है, इसलिए वृंदावन बहुत श्रेष्ठ है, और कृष्ण के साथ भगवान की कृष्ण की प्रेयसियां हैं, इससे वह वन और अधिक सुंदर लग रहा है। क्यों नहीं सुंदर लगा? जिस वन में भगवान इस तरह विहार कर रहे हैं वह वन सर्वोपरि, क्या बैकुंठपुरी उसके सामने जहां भगवान गा रहे हैं, नाच रहे हैं, वैकुंठ में पता नहीं कभी गाते हैं कि नहीं, सब कला के अधीश्वर हैं, लेकिन वैकुंठ में शायद नहीं गाते होंगे, उनके भक्त लोग गाते रहते हैं। और भगवान श्री राम भी गाते हैं कि नहीं ये कुछ पता नहीं चलता है, है? नृसिंह भगवान तो गा ही नहीं सकते, बड़ा भगवान भीख मांगने के फिर नहीं तो क्या उपेंद्र बामन देव अपने ट्रिक में है, कैसे बात बनाऊंगा, कैसे भीख मांगूंगा, भाट की तरह जाकर के गिरदावली गाएंगे। शुरू से ही योजना बना रहे थे, अपने मां से उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, तू में बात कहना मत, पूछने पर भी किसी को मत बताना कि हमारे गर्भ से विष्णु आएंगे और जाकर के भीख मांगने, ये बात कहना मत। मना किया था भगवान ने, और मां अदिति किसी को कही नहीं, फिर भी बात तो खुल ही जाती है, कोई साधारण व्यक्ति थोड़े जा रहा है भीख मांगने, तो खुल गई बात कि विष्णु आए हैं, ये आए हैं, तुम शुक्राचार्य जी कहे ना बलि महाराज, ये साक्षात विष्णु भगवान है, ये सब वही रोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्द, ये विष्णु है, विष्णु कभी भीख मांगेंगे लक्ष्मीपति, ये नाटक कर रहे हैं, इसलिए मत दो। कोई सचमुच के भीख मांगा होता, ब्राह्मण होता, दे देते, कुछ पुण्य होता, धर्म होता है, इनको देना क्या है, और ये ले करके अपने बड़े भाई इंद्र को दे देंगे, इंद्र के लिए भीख मांगने आए हैं और इंद्र तुम्हारा बैरी है, अगर तुम दे रहे हो तो यही मान करके दो कि इंद्र को दे रहा हूं। बहुत रोके, उनको इस बात का पता चल गया था कि विष्णु भगवान ये सब चीज कर रहा था, उनके तेज को देख करके समझ गए होंगे, तो परम विद्वान है शुक्राचार्य जी, समझ गए भगवान ने ऐसे ब्राह्मण का रूप बनाया है, ऐसा दूसरा ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। वो भी आकर के कोई ब्राह्मण इतना थोड़े बेवकूफ है कहेगा कि हमारे छोटे छोटे पैर से तीन पग भूमि चाहिए जहां मैं खड़ा हो सकूं सो सकूं, इतनी जमीन तो हमको होनी चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति तुरंत समझ गए जाए कि नहीं भाई ये कोई ट्रिक है, तीन पग भूमि कौन ब्राह्मण मांगेगा, ज्यादा मांगेगा। और भगवान ने जब ये कहा कि तीन पग भूमि चाहता हूं राजन, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे और कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने पैर से नापूंगा, पदा मम मेरे पैर से मैं नापूंगा, मतलब बहुत कम चाहिए हमको, भगवान के कहने का अर्थ ये था अपने पैर से नापूंगा, कम चाहिए तो तीनों लोग तो भगवान के लिए वास्तव में बहुत कम है, तो कुछ नहीं है। और वो कहते इतने से हमारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा। बलि महाराज को गुरु जी ने कहा कि भगवान विष्णु हैं और एक पैर से स्वर्ग तक नापेंगे, ब्रह्मलोक तक और नीचे पाताल तक, तीसरे पैर के लिए तुम्हारे पास कोई भूमि है ही नहीं, तो वैसे भी झूठा बनोगे, इसलिए कुछ बचा करके झूठ बनो, बचाओ, कह दो कि हम इतना नहीं देंगे, हम अपनी इच्छा के अनुसार देंगे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं देंगे। और भगवान बैठे हैं सिंहासन पर और उनके सामने गुरु शिष्य में लड़ाई चल रही है। शुक्राचार्य कहते हैं कि मत प्रतिज्ञा करो कि मांगो, जो मांगो ये दूंगा। बलि महाराज कहता तो प्रतिज्ञा कर चुके तो फिर भी तुम कह दो कि इतना नहीं दे सकते, हम दूसरे के पैर से नपवाएंगे, चाहे किसी अमीन द्वारा नपवाएंगे, आपको हम दे देंगे, हम आपके पैर से नहीं नापेंगे, हम लोग खतरा है। तो बलि महाराज कहते गुरु जी अब जो मुंह से निकल गया निकल गया, हमें झूठ बोलने के लिए बाध्य मत कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये पृथ्वी कहती है कि सब कुछ मैं सह लेती हूं लेकिन झूठ बोलने वाले का भार मुझसे नहीं सहा जाता, मैं पृथ्वी का वजन नहीं बढ़ाना चाहता। जब इस ब्राह्मण को कह दिया कि तुम मांगो अपनी इच्छा के अनुसार मांगो और ये बेचारा तीन पग भूमि मांगा, तो फिर मैं कह दूं कि नहीं दूंगा, और आप कहते हैं कि ये विष्णु है तो नहीं देने पर तो मार कर ले लेगा, तो बेइज्जती भी होगी धन भी जाएगा, इससे अच्छा है कि दे दिया जाए। बलि महाराज कहते जस भी जाएगा, मैं बंधन में भी पड़ूंगा, या बांध करके जेल में डाल देंगे और धन भी ले लेंगे। आप जब कहते हैं कि ये विष्णु है तब तो और देना होगा। अरे आप जैसे ब्रह्मवेत्ता, आप जैसे यज्ञ विधान करने वाले लोग यज्ञ में किसकी पूजा करते हैं? शुक्राचार्य ने कहा इन्हीं की पूजा करते हैं। तो यज्ञ में आप लोग बुलाते हैं कि हे कृष्ण हे विष्णु यह गच्छ यह तिष्ठ इदम गृहण या लीजिए लीजिए, और भगवान आते भी नहीं, केवल अनुमान करके भाव द्वारा यज्ञ की आहुति देते हैं, जिनको यज्ञों में जिनकी पूजा करते हैं वही प्रभु आज मेरे सामने आकर के मांग रहे हैं और मैं न दूं। आप जरा बताइए ये कितनी बड़ी गलती है, और सब कुछ तो इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है, तो मैं दूंगा ही। शुक्राचार्य ने क्रोध में श्राप दे दिया, तुम राज लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओ, गुरु की बात नहीं मान रहे। तो गुरु को ऐसा होना चाहिए कि भगवान को देने से रोके, बताइए, स्वयं कह रहे कि साक्षात भगवान है तो भगवान को देने से क्यों रुक रहे हो? साथ दे दे तुम राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओ, वो तो भ्रष्ट होना ही था, तो भगवान लेंगे ही, आपके साथ में क्या दम है। बाद में भगवान ने ना पा, तो मैं ये कह रहा था कि वामन देव भी गीत उतना ही गाए होंगे और नाचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, और नृसिंह भगवान क्या वेणू बजाएंगे बताइए, गाय चढ़ाएंगे क्या? गाय के झुंड में जाएंगे तो गऊ अपने आप भी दुख कर भाग जाएंगे, ये ऐसा चरवाहा नहीं चाहिए। जब देवता सब भाग गए उनके अवतार के समय तो और कौन ठहर सकता है? ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवता सब दूर भाग गए। जब जब भगवान का अवतार होता है तो देवता लोग स्वागत करते हैं, भगवान को माला पहनाते हैं, भोग अर्पण करते हैं, आसन देते हैं, गीत गाते हैं, बहुत अच्छा हुआ प्रभु पाए, सत्य व्रतम सत्य परम ते सत्य, भगवान की स्तुति करते हैं, अपनी अपनी सेवा समर्पित करते हैं। लेकिन भगवान का एक ऐसा भयानक अवतार हुआ उनके प्रकट होते ही देवता लोग दूर भाग, थर थर कांपने लगे, बाप रे बाप। और भगवान के पास कोई माला नहीं पहनाने आया तो हिरण्यकश्यपु की आंत को निकाल करके माला की तरह लपेट ली, कोई माला पहना ही नहीं रहा तो कौन आवे उनके निकट। तो जब आंत की माला पहने तो और भयावह लगने लगे, हिरण्यकश्यपु के पेट से जो खून का फवारा निकला था भगवान के केसर पर, मतलब तो गर्दन के बाल पर, इधर उधर सब, और मूड भी बिल्कुल क्रोध में था भगवान, वो बनावटी क्रोध था, भगवान में तो क्रोध आ ही नहीं सकता, दिखा रहे थे कि मैं इतना क्रोध में हूं, इतना क्रोध में। हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, इसलिए देवता लोग जब देख रहे थे तो और दूर पीछे भाग रहे थे, पीछे भाग रहे थे। जो स्तुति करने चालू किए तो भगवान ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल भयावह रूप, और किसी देवता विशेष वर्ग में जब दृष्टि जाती थी, सरकार हम लोग किन्नर हैं, वो बोलते थे सरकार हम लोग किन्नर हैं, हम आपके भक्त हैं, यह दुष्ट हिरण्यकश्यपु हमको बहुत सताता था, आपने इसका वध कर दिया, हमें बहुत सुख मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है। हे भगवान पितरों की तरफ दृष्टि डाले, वे लोग कहते हैं हे प्रभु हम पितर हैं, हमारे संतान जब हमको पिंड दान करते थे, श्राद्ध अर्पित करते थे, तो यह दुष्ट हिरण्यकश्यपु स्वयं ही पी जाता था, स्वयं खा जाता था, हमको मिलता ही नहीं था कुछ, आज इसका पेट फाड़ करके आपने हमारा भाग इसके हाथ से निकाल दिया, हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमको मिल गया, मतलब अब मिलेगा बाद। दत्ता आनंद नमोस्तुते, आपने हमको बहुत आनंद दिया, बहुत आनंद दिया, आपको नमस्कार। फिर इंद्र की तरफ भगवान ने देखा, हे प्रभु मेरा नाम इंद्र है, मैं आपका सेवक हूं, मेरा हृदय प्रभु आपका भवन है, आपका मंदिर है, आपका ही चिंतन मैं करता हूं, मैं आपका भक्त हूं, लेकिन जब से हिरण्यकश्यपु हुआ तब से एक सेकंड भी आपका चिंतन नहीं हुआ, डर के मारे उसी का चिंतन होता है, आज से मैं ठीक से जप करूंगा, ठीक से आपकी भक्ति करूंगा, और बहुत अच्छा किए, तो भय के मारे केवल वही हृदय में समाये रहता था। और कोई कोई वर्ग हैं देवताओं के जैसे विद्याधर हैं, वे कहते हैं हे प्रभु हम लोग बड़े बड़े यज्ञों में जहां आपकी कीर्ति गाई जाती है, जस गाया जाता है, तो हम लोग उसमें जाते रहते थे, और हम लोगों को लोग गाने पर बहुत इनाम देते थे आपका कीर्तन करने पर, लेकिन जब से हिरण्यकश्यपु हुआ तब से इसी का जस गाना पड़ता था, और हम लोगों को इतना डांटा था कि अगर एक बार विष्णु की कीर्ति गाए तो कत्ल कर दूंगा, तो इसी का जस गाते गाते जीवन बीत रहा था। अब हम आपका कीर्तन गाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस तरह से भगवान को लोग कह रहे थे, लेकिन भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हो रहे। जितने लोग थे, कुछ लोग कहते हैं कौन दल है किन्नर गंधर नर, कोई एक दल है देवताओं का, वो कहें सरकार ये हम लोगों से पालकी ढोआ रहा था। पालकी ढोआ रहा था, यहां तक कि नारद जी तक ऋषिकस्पु के पास आते थे तो उसी का गुण गाते थे वीणा बजाकर। वो तो जानते थे भगवान का भक्त है इसलिए गा रहे थे, कोई बात नहीं, भगवत वैष्णव का ही जस गा रहे थे, ट्रिक से गाते थे। लेकिन ये मजाल नहीं थी कि उसके सामने वो विष्णु का कीर्तन गा दे। नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमण नाम, तो बाहर जाते थे तब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, नहीं तो भीतर दरबार में आने पर हमें कस्तू का गीत गाते थे। इतना उसका चलावा था हमें कस्तू, बहुत प्रचंड राक्षस था दैत्य। जन्म के समय ही पहले ही सूर्य चंद्रमा की ज्योति छीन हो गई थी उसके प्रताप से, भागवत में लिखा हुआ है। और भगवान के प्रति वैर भाव था ही, उसको जीवन में सबसे बड़ा धक्का हृदय पर इस बात का लगा कि उसका बेटा ही विष्णु का भक्त हो गया। ये बहुत खराब लगा उसको, और कहता था प्रहलाद महाराज से छी छी खानदान में दाग लगा दिया दुष्ट कहीं। अरे तुम्हारे चाचा का मर्डर कौन किया याद है? हृदयाक्ष को कौन मारा है? उसमें तो जन्म भी नहीं था, जानता नहीं है नालायक। तुम्हारे चाचा का वध किया विष्णु ने बराह रूप धारण कर और उसी का डिवोटी बन गया। कोई दूसरा कोई बना होता तो हिरण्यकश्यप को इतना दुख नहीं होता है, खास अपना बेटा और विष्णु का भक्त निकल जाए ये तो सहन से बाहर हो गया। इस प्रकार मैं ये कह रहा था कि देवता लोग भगवान का गुण गा रहे थे, दूर से नमस्कार कर रहे थे, भगवान के अवतार की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन कोई निकट नहीं आ रहा था, कि भगवान के लिए थोड़ा आसन दें या पानी ले जाएं गिलास पीने के लिए, कुछ नहीं। कांप रहे थे, और जिस पर भगवान देखते थे वही हाथ जोड़कर कहता था हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। बस यही भर भक्ति थी। जा रहा था कि भगवान गा रहे हैं, बहुत सुंदर गाते हैं और गोपियां गा रही हैं। इस सिलसिले में वर्णन हुआ था कि भगवान बांसुरी बजाते हैं, बहुत सुंदर गीत गाते हैं, गाते ही गाते हैं। तो उस प्रसंग में मैं ये कह दिया कि पता नहीं नारायण कभी गाते हैं कि नहीं, हो सकता है गाते होंगे, लेकिन कोई ऐसे भागवत में कहीं वर्णन नहीं है। पर भगवान श्रीकृष्ण के गाने और नाचने का ही वर्णन ज्यादा है, गा रहे हैं, गा रहे हैं। गोचारण करके आते हैं तो बांसुरी पर गाते रहते हैं, गोचारण के लिए जाते हैं तो गाते रहते हैं, गौ उधर चरती रहती हैं और किसी वृक्ष के नीचे गाते रहते हैं, बोले बजाते रहते हैं, और किसी के हाथ में धनुष बाण है मार काट करने के लिए, किसी के हाथ में चक्र है, इनके हाथ में केवल बांसुरी। सही है या झूठ है? एक बार श्रीपाल अखंडानंद सरस्वती जो वृंदावन में रहते हैं वे कह रहे थे कथा, तो कहे कि एक बार अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के दरबार में इस बात पर बहस छिड़ी कि भाई हिंदुओं में कौन ईश्वर सही ईश्वर है, किसी को कोई इष्टदेव मानता है, कोई किसी को मानता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि सबका फोटो लाइए, कोई अंग्रेज था वो कहा कि सबका फोटो लाइए, हम देखेंगे कि कौन ईश्वर है, कौन वास्तविक भगवान। तो देखा तो भगवान शिव को भी रखा गया, दुर्गा जी को भी रखा गया, और भगवान विष्णु को, भगवान श्री राम को ऐसे रखा गया। तो देख रहा सब ध्यान से कि कौन क्या धारण किया है हाथ में, तो जिसके हाथ में चक्र था, त्रिशूल था या धनुष बाण था, तो वो कह दिया ये सब डर रहे हैं, इनको डर है किसी से, लेकिन जो बांसुरी बजा रहा है इसको किसी से डर नहीं, यही भगवान है। इसको कोई भय नहीं है, जिसको भय है वो कैसे भगवान हो सकता है? यह एक मजाक की बात है वास्तव में। भगवान तो भूष बाण धारण करते हैं, चाहे चक्र धारण करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत स्वरूप है, स्वभाव है, हमेशा मस्ती में गाते रहना, दुनिया को सुखी करना, नाचना गाना। यह बात नहीं है कि मौका पड़ने पर वे अश्रु को नहीं मारते थे, लेकिन नाचते हुए ही मार देते थे, कभी हथियार नहीं उठाए। केसी आया था तो उसके मुंह में अपना बांह डाल दिया और बांह को इतना बढ़ाया कि उसकी सांस फूलने लगी, वो गिर करके वैसे फट गया जैसे ककड़ी फट जाती है, ऐसे सुखदेव को सभी कर कर्कटिका ही सीधा पेट फट गया, मर गया। बांह को बढ़ाए, वहां पर सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, ऐसे भगवान का बांह बढ़ने लगा उसके कंठ में जैसे किसी जलोदर हो गया कोई होता है उसकी उपेक्षा करने पर बढ़ता है। उदाहरण देते हैं भगवान की बांह ऐसे बढ़ने और बढ़ करके एयर टाइट कंठ में हो गया, सांस न निकलना न अंदर होना, वो छटपटा करके पेट फट गया, मर। अघासुर के पेट में खुद चले गए, ऐसा नहीं था कि बाहर से कोई पेड़ लेकर के या छड़ी पीट पैट करे, सीधे चले गए पेट में। और वहां जाकर के भी उन्होंने अपने को ऐसा बढ़ाया कि उसका भी कंठ रुद्ध हो गया और उसका पेट फट गया, उसके उससे निकल गए बच्चे बछड़े और भगवान सब निकल। अद्भुत लीला, कभी हथियार नहीं उठाए ब्रज में। वृक्षों को गिराना था तो स्वयं बंद करके और खींच करके गिरा दिए कोई भी लीला माधुर्य से मंडित है, ऐश्वर्य का प्रकाशन है लेकिन बहुत दबा हुआ है ऐश्वर्य। अपराधी भगवान बंधन में डाला गया है और दूसरे का उद्धार कर दिया खींचते खींचते। कोई ये नहीं कहेगा देखो परम पुरुष भगवान उद्धार कर रहे हैं, करने बच्चा उद्धार कर दिया, खींच दिया। शकटासुर था, गाड़ी पर बैठा हुआ था और पैर उछल रोने में उछालते हुए पैर उसको उलट दिए, रो रहे थे, भूख से रो रहे थे, मां यशोदा का स्तन पीना चाहते थे। बच्चे जब रोते हैं तो पैर ऊपर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये देखा गया। जैसे करने में ही थोड़ा सा बढ़ाए बस धड़ाम से वो गाड़ी उलट गई, बड़े बड़े बर्तन फूट गए, रस बहने लगा, ये होने लगा, इधर उधर सारा फेस्टिवल शोक में बदल गया। तो जितने लोग आए थे सब अब कृष्ण को देखने लगे। श्रीपद बाबा साहब जी ने बहुत सुंदर टीका किया है, वो कहते हैं कि कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव चल रहा था। माता यशोदा सबका स्वागत कर रही थी, घर में बहुत लोग आने वाले थे इसलिए जगह नहीं थी, कहीं किसी को खिलाना, कहीं पूजा पाठ करना, कहीं गान बजान, कहीं कुछ, सारा घर तो भरा हुआ था, तो भगवान के लिए जगह नहीं मिली। तो उनको बाहर आंगन में, बाहरी घर में एक बैलगाड़ी रखी हुई थी, छकड़ा रखा हुआ था, उसके नीचे सुला दिया माने, और जगह जगह नहीं थी। तो भगवान रोने लगे कुछ ही देर के बाद, उधर उत्सव चल रहा है, सब लोग खा पी रहे हैं, गा बजा रहे हैं, तब तक कृष्ण रोने लगे। तो रोते हैं तो इस पर श्रीपद बल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवान सोच रहे हैं कि वो हो मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई, मैं बैकुंठ छोड़ करके जिसके घर में आया हूं वो मुझे एक बैलगाड़ी के भीतर फेंक दी, हमारे लिए कोई जगह नहीं है, और सब खा रहे हैं पी रहे हैं मौज मस्ती में हैं और हमको दूध पीने का भी अवसर नहीं मिल रहा, इतना फंस गई दूसरे को खिलाने में, हमको दूध नहीं पिला रही। तो भगवान शोक में रोने लगे, अब क्या करूं। तो उन्होंने सोचा क्या उपाय करूं कि सबका मुझ पर ध्यान आवे, इसीलिए उन्होंने खड़े ट्रक को पलट दिया। इतना धड़ाम धड़ाम आवाज हुई तो सब लोग खाना पीना छोड़ छाड़ करके सब आकर, अरे कृष्ण कैसा है, कृष्ण कैसा है, कृष्ण कैसा है, सबको खींच लिया। ध्यान नहीं दे रहे थे तो भगवान ने स्वयं ध्यान खींच लिया, तृणावर्त लेकर के उड़ा, उड़ गए, ऊपर गए और उसका गला पकड़ लिए जोर से और उसको पत्थर पर पटक दिए। कभी किसी को मारने में हथियार नहीं उठाया। मथुरा में जब गए तो सर्वप्रथम हाथी का दांत लिए और उसी दांत से हाथी को पहले मारे। हाथी का दांत उखाड़ लिए दोनों भाई, एक दांत बलराम जी लिए और एक कृष्ण लिए। पहली बार मथुरा में हथियार उठाए। और इसके पहले वे धनुष तोड़े, जो धनुष बहुत भारी था, जिसकी पूजा करता था कंस, धनुष यज्ञ था, रक्षक थे बहुत, 3.5 लाख मन उसका वजन था उस धनुष का, वो उठा नहीं सकता। तो उसके रक्षक थे भगवान श्री कृष्ण गए, तो लिखा था सब जगह धनुष यज्ञ महोत्सव, धनुष यज्ञ महोत्सव। तो बच्चे हैं, स्वाभाविक इच्छा हो जाएगी कि हम देखें कैसा धनुष है, पूजा प्रणाम करेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे। तो भगवान जब जा रहे थे तो जाने पर कुछ लोगों ने रोका, ऐ उधर अल्टर में मत जाओ। गुप कर कहां तक घूमता है लड़का आया, इतना उपेक्षा वचन नहीं बोलना चाहिए, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। और कृष्ण बलराम जाने लगे धनुष के पास, वो लोग कहते थे छूना नहीं है, छूना नहीं है, ये पूज्य धनुष है, ये है वो है। कृष्ण को तो मारना था इन लोगों को, तो गए जबरदस्ती चले गए धनुष के पास। और लोग तो छूना मना कर रहे थे, वो लोग तो कभी सोच नहीं रहे थे कि उठा लेगा धनुष और तोड़ देगा, ये कभी वो सोचे नहीं। कृष्ण गए, कई रक्षक से कई पुलिस लगे हुए थे, हाँ 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 हाँ, उधर जा रहा, उधर आ, घेरो घेरो, मारो मारो। वो मारने के लिए चले, तब तक तो कृष्ण धनुष उठा लिया और उठा करके जैसे गन्ना को कोई तोड़ दे वैसे तोड़ दिए, एक हाथ से, दोनों हाथ नहीं लगाए, ऐसे उठाए और उसको ऐसे तरह से तोड़ दिए। गन्ना को जैसे तोड़ा जाता है, वही कोमल गन्ना, बहुत जोर की आवाज हुई, उस आवाज को कंस भी सुना। इसके बाद ये लोग घेरे मारने के लिए कृष्ण को, धनुष का एक टुकड़ा बलराम जी लिए और एक टुकड़ा भगवान लिए, उन लोगों को उसी धनुष के टुकड़े से मार मरकर खत्म कर दिया। मथुरा के न्यूज पेपर में हेडलाइन में छपा, धनुष गायब हो गया और इतने पुलिस मारे गए, 2 आतंकवादी आकर के मार, ये छपा हो गए। वो लोग तो वही निकालेंगे, साधुओं को ही कहेंगे ना कि आतंकवादी है। ये और खबर फैल गई तुरंत। उस रात कंस को बहुत दुःस्वप्न में आया, क्योंकि उसको कहा गया था कि जिस दिन ये धनुष टूटेगा तो समझ लेना कि तुम्हारा काल आ गया, और जो तोड़ा है वही मारेगा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो मारेगा तुमको। तो उस दिन रात को कंस को एक सेकंड भी नींद नहीं आई, कांपता रहा, खड़ता था, बुला करके पहलवानों को, अपने भाइयों को नियुक्त किया कि कल इन दोनों लड़कों को यहां मार देना है, दंगल के बहाने कल मार दो इनको, खत्म करो, ये तो बहुत खतरा करने लगा। धनुष जब तोड़ दिया तो उसको चाहिए था कि अब कृष्ण से माफी मांग ले, और कहा ठीक है, जो गलती किया सो गलती किया, आप नहीं करूंगा, लेकिन अब उपाय करने लगा। ये मूर्खता देखी, तो रंग साला तो सजाया था, किया था, तो एक महावत को, हाथी वाले को, जो कबूले अपने हाथी का मालिक, उसको कहा कि तुम गेट पर हाथी खड़ा करना, वो दोनों कल तो आएंगे ही, निश्चित है सवेरे आएंगे, तो तुम गेट पर बिल्कुल हाथी को ऐसे तिरछा खड़ा करना, सीधा नहीं, तिरछा खड़ा, पूरा गेट घेर लिया, वो भी मरने पर ही पड़ा था बदमाश महावत, तो घेर लिया। कृष्ण आए अपने सखाओं के साथ, श्री बलराम जी के साथ, आने पर कृष्ण ने भी वो इसी तरह का वचन कहा, उन्होंने कहा ऐ महावत, हाथी को थोड़ा बगल में करो, जाना चाहते हैं रंगशाला में, मल्ल युद्ध देखना चाहते हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं, हमको बुलाया गया है निमंत्रण देकर, हाथी को हटाओ, भगवान थोड़ा कड़ा बोले कि उसको क्रोध आ जाए, हटाओ जल्दी, अगर नहीं हटाओगे ना तो हाथी को और तुमको अभी जमराज के घर भेज दूंगा। छोटा सा बच्चा ऐसा बीस जैसा बोला, वो तो बिल्कुल क्रोध में हो गया। क्या जमराज के घर में भेजेगा? ठीक है आओ। वो हाथी पर अंकुश मारा और प्रेरित किया कि इस लड़के को खत्म करो, तुरंत ऐसे प्रेरित किया। प्रेरित किया तो चला कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए चला, लेकिन भगवान उसके चारों पैरों के नीचे हो गए तो खोजने लगा सूंघ से, ऐसे वैसे सूंघ रहा था, सूंघ सूंघ करके खोजता था। तो इस पैर के पास कृष्ण रहते थे तो वहां सुनता था तो चले जाते थे पीछे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कहीं पकड़ नहीं पाया। तो परेशान कर दिए, बड़ा शरीर वाला हाथी इस तरह से करे तो ऐसे तो बेदम कर दिया भगवान ने उसको। वो तो फुर्तीला है, बालक है, उनको कोई परिश्रम नहीं पड़ रहा था, वे ऐसे करने लगे। इसके बाद वो भागे निकल कर, जब भागे तो इतने कम दूरी पर भाग रहे थे कुबले पे, ये सोच रहा था कि अब पकड़ा अब पकड़ा अब पकड़ा, जब तक एक बार भगवान कृष्ण गिरने का नाटक किए, गिरे जमीन पर तो वह अपने दोनों दांतों से कृष्ण पर प्रहार किया बहुत जोर से, लेकिन भगवान तो उठ करके भाग गए वहां से, और उसके दोनों दांत फर्श पर लगे, उसको बहुत दुख हुआ, बहुत जोर से मारा था। इसके बाद श्री कृष्ण आए और उसका पूछ पकड़ लिए, पूछ पकड़ करके वो दाएं घूमता था तो बाएं होते थे, बाएं होता था तो दाएं होते थे, ऐसे घुमाने लगे। और श्री बलराम जी देख रहे हैं, भगवान ने मना किया कि आप अभी दूर रहिए, हमको काम करने दीजिए। पूछ पकड़ लिए, ऊपर परेशान हो गया, महावत तो ऊपर से सारा देख रहा है, और हाथी की शक्ति पस्त हो रही थी इस तरह से, एक तो दांत लगे थे जमीन पर उससे वो दर्द हो रहा था, और दूसरे बाएं दाएं घुमाते घुमाते बेदम कर दिए, और घुमाते घुमाते हाँ मारे कब कृष्ण उसको भागे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि उसके बाद वो आगे आ करके और हाथी के सूंड पर मुष्टिका मार करके कृष्ण भागे, इससे और चिढ़ गया था हाथी। बाद में ये पूछ पकड़े और पकड़े पकड़े ऐसे हिलाते हिलाते गिरा दिए, और जब गिर गया तो आगे जा करके उसके सूंड पर अपना एक पैर रख दिए भगवान, और दांत खींच कर निकाल लिए। अपार बल है भगवान में, दांत निकालना कौन बड़ी बात है तुम्हें कष्ट होते। और जब वो दांत निकाल रहे थे तो बलराम जी पहुंच गए, उन्होंने कहा एक मैं निकालूंगा। तो दोनों भाई दांत निकाले, दांत के मूल से टप टप खून गिर रहा था, और ये दोनों अपने कंधे पर रखे, बाद में उसी दोनों दांत से हिणक उसको पीटने लगे, कुबले पीड़ को खूब ढाल ढाल पीटने लगे, और महावत जो कूद करके भागना चाहता था उसको भगवान ने मारा, एक ही बार में मर गया, उसको भी मारा और हाथी को मारा। और जनता जो देख रही थी गेट के पास, सब लोग खुश हो रहे थे, ये साला बदमाशी कर रहा था, इसको हाथी हटा लेना चाहिए था, देखो मर गया। ये बच्चे आ रहे थे, रास्ता भी नहीं दिया, ऊपर से कितना पटांग बोला है, मर गया अच्छा हुआ। सब लोग तमाशा देख रहे थे गेट के पास, और दोनों भाई हाथी को मारे और दांत ले लिए। दांत क्यों इधर उधर करें, हाथी दांत बिकेगा भी तो बहुत महंगा बिकेगा, ले लिए। कचरी काछे थे और ले लिए, तब तक खून गिर रहा था, देह पर भी खून लग रहा था, सभा में प्रवेश किए। तो वहां पर कुछ ऐसे मूर्ख लोग थे जो विभत्स रस वाले, वो देख करके कहे कि भी कैसे बिना पढ़े लिखे लड़के सभा में बिना नहाए धोए और खून से लथपथ होकर आ रहे, उनको कोई बुद्धि नहीं, उनको कोई सिखाने वाले नहीं, हड्डी टांग करके आ रहे हैं और सभा में आ रहे हैं नलायक, ये भावना उनकी हुई। दस प्रकार के लोग वहां बैठे हुए थे, दस भाव वाले, तो दसों की दस भावना हो रही थी। सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन वहां पर किया है। बात यह रही थी कि भगवान बहुत सुंदर गान करते हैं, नृत्य करते हैं, इस पर ये लीलाएं उभर आई। वे गा रहे थे और नद्या पुलिनम आविश्य, जमुना जी के पुलिन पर आए गोपियों को लेकर के, जहां पर गोपी गीत गाया जाएगा बाद में। पुलिन, पुलिन मतलब बालुका का प्लेटफार्म होता है जो जमुना जी अपने लहरों से बनाई थी। देखा जाता है कि नदियों में या समुद्र में ये शक्ति अपने लहरों से भी बहुत सुंदर तट का निर्माण करते हैं। कभी कभी हमने देखा है जुहू में समुद्र किसी किसी दिन इतना सुंदर प्लेटफार्म बनाता है, लोग उस पर टहलते हैं। तो जमुना जी तो भगवान की पटरानी है, उनकी शक्ति विशेष है, तो अपने लहरों से रासलीला के लिए बिल्कुल योग्य भूमि बना दी थी अपनी बालू का। उस बालू में समता थी, एक समान बालू था, ऐसा नहीं कहीं कंकड़ हो, कहीं खर हो, कहीं कुछ हो, और कहीं बहुत ढीला हो, बहुत कड़ा हो, एक समान। तो उस पुलिन पर भगवान प्रवेश किए गोपियों के साथ, हिम बालू का, जिसके बालू हिम जैसे दिख रहे थे, उज्जवल बर्फ जैसे, अथवा हिम बालुका बालुकुम का अर्थ है कि वह ठंडा था, गर्म नहीं था। और जमुना जी की तरंगों को छू करके जो पवन चल रहा था और कुमुद के आमोद को, गंध को लेकर के, ऐसे पवन से वह पुलिन सुवासित था। वहां पहुंचकर भगवान ने किस तरह से गोपियों का समादर किया, किस तरह वे विहार कर रहे हैं, इसका वर्णन करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल को नीवेस्तना लभन नर्मन खाग्र पातहि श्रीलावलोक हसितैर् ब्रज सुन्दरीणाम् उत्तम भयं गतिपतिं रमयां चकार। बाहु प्रसार, बाहें फैलाना, भगवान अपने दोनों बाहों को फैलाकर गोपियों के बाह को ले रहे हैं। बाहु प्रसार यह पहली लीला बताई जा रही है। अपनी सुंदर बाहों को फैला रहे हैं भगवान, बाहु प्रसार इसलिए करते हैं गोपी को आलिंगन में लेने के लिए। बाहु प्रसार इसलिए दूसरी बार वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी परिलंब, बाहु प्रसार परिलंब, अपनी दोनों बाहों को फैलाकर भगवान आलिंगन कर रहे हैं। जो बाहु प्रसार परिलंब है, परिलंब है का अर्थ है आलिंगन, परिलंबन, बाहें फैला करके आलिंगन करना, मतलब उदार भाव से। ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई गोपी पकड़ रही है और भगवान अपनी बाहों को सिकुड़ाए हुए हो, वो नहीं आलिंगन चाहते, वो स्वयं ही बाहें फैला करके आलिंगन कर रहे हैं। और कर अलक नीली स्तन आलभन, हाथों को दबा रहे हैं, हाथ छू रहे हैं, हाथ से हाथ मिला करके चल रहे हैं, और अलक अपनी प्रियाओं के अलग केश को संवार रहे हैं, छू रहे हैं। और उरु, कभी वे उनके जान को छूते हैं, और नीली बेल्ट है, साड़ी बंधी हुई है, उसको छूते हैं, इसका स्पर्श करते हैं। और नर्म नखाग्र पाते, कभी परिहास करते हैं, मजाक करते हैं, हंसते जाते हैं, और कभी नखाग्रपात करते हैं, हल्की सी चींटी काटना, इसको नखाग्रपात कहते हैं। ये श्रृंगार रस की उद्दीपक सामग्रियां हैं। पहले ही अपने मन को सावधान रखना चाहिए कि यह भगवान की लीला है, प्रकृति से पार दिव्य राज्य की लीला है। ये कोई काम विकार नहीं है, कोई काम कला नहीं है। ये जो भी बाहु प्रसार कर अलक निधि आदि का स्पर्श है, सब कुछ दिव्य है। बाहो हो प्रसारे न यह परिरंभ आलिंगनम तेन, बाहु प्रसार परिरंभारंभ आलिंगन का प्रारंभ कैसे हो रहा है? बाहु प्रसार से। भगवान अपनी सुंदर बाहों को फैलाकर आलिंगन कर रहे हैं। जब वह बाहु प्रसारेण गाढ़ आलिंगनम इत्यर्थ, अथवा बाहु प्रसार इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उसके द्वारा भगवान गाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। और करयश्च अलकानाम च उरुश्च निव्याश्च अस्तमेयश्च आलभनेन स्पर्शनेन नर्मरा परिहास वचनेन नखाग्र पातश्च छेल्या वलोक हसित छेल्या विविध क्रीड़या अवलोक कटाक्ष क्षेत्रय हसित ब्रज सुंदरी नाम श्रीकृष्ण विलास योग्य नाम रतिपति प्रेमात्मकम कामम जदवा रते है कांतोचित प्रीति लक्षणाया पति तदुचित महाभावाख्यम परम प्रेमान उद्दीप। रतिपति को भगवान उद्दीप्त कर रहे हैं। शब्द सुनने में ऐसा लगता है कि रति नाम की एक स्त्री है देवी और उसके पत्नी कामदेव, परंतु ये यथाशुत अर्थ नहीं है। रतिपति का रति का अर्थ है भगवान में अनुरक्ति, रक्त होना। भगवान श्रीकृष्ण में गोपियों की जो आसक्ति है, प्रेम सेवा की लालसा है, इसको रति कहा गया। और रति पति का अर्थ है रति में सर्वश्रेष्ठ रति महाभाव, उसको कहते हैं। भगवान में प्रेम होना ये रति है, लेकिन महाभाव होना ये रतिपति है। महाभाव महाप्रेम, उस प्रेम को उद्दीपन भगवान श्रीकृष्ण उद्दीपित कर रहे थे। और रमयान चकार रमया मास, इस तरह गोपियों को सुख दे रहे थे, आनंदित कर रहे थे। यह लीला बहुत देर तक चली, ऐसे भगवान इस तरह से कर रहे थे। परिहास वचन बोलना, गाना, हस्त आदि का स्पर्श करना, मुस्कुराकर देखना, केश का स्पर्श करना और भी बहुत तरह से। तब सुखदेव गोस्वामी आगे की लीला कह रहे हैं, इस प्रकार से जब परम दुर्लभ परम प्रियतम श्याम सुंदर के द्वारा गोपियों को मान मिला, भगवान इस तरह से उनका आलिंगन किए, उनके साथ नाचे गाए, तो गोपियों के मन में मान उदित हुआ। आत्मानम मेलिवेष्टेना मान्यम अभ्यधिपम भूमि, इस पृथ्वी पर वे सबसे अधिक सौभाग्यवती अपने को मानने लगी। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, वास्तव में गोपियां संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे भाग्यवती नारी हैं। भगवान कृष्ण की प्रेयसी है, भगवान कृष्ण जिनको छू कर अपने को सुखी मानते हैं, जिनसे बातें करके, जिनको देख करके आनंद घन भगवान भी आनंदित होते हैं, तो इन स्त्रियों को क्यों नहीं मान होगा, क्यों नहीं गर्व होगा। प्रेम में ऐसा होता, प्रेम जब घनीभूत होता है और अधिक बढ़ता है तब मान होता है। सुपरूप गोस्वामी ने बताया है कि दंपत्योर भाव है एकत्र सत्य अप्यनुरक्तयो हो, स्वाभिष्टा श्लेष विक्षा दे स्वाभिष्टा अश्लेष विक्षा दि विरोधी मान उच्चते। जब दो युवक ज्योति में, अर्थात भगवान राधा कृष्ण या गोप श्री कृष्ण और गोपी कहिए, तो ऐसे जनरल बात है कि दंपत्य दंपति में प्रिय प्रियतम में युवक ज्योति में एक ऐसा भाव उदित होता है जो उनके मन में अभीष्ट है, आलिंगन करना, देखना एक दूसरे को, फिर भी नहीं देखते। एकत्र सत्व, दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक साथ रहते हैं और परस्पर अनुरक्त भी रहते हैं, प्रेम बना रहता है, फिर भी एक ऐसा भाव उदित होता है दोनों में परस्पर, कभी पुरुष में या कभी स्त्री में, ज्यादातर स्त्री में, कि वे स्वाभिष्ट आश्लेष विक्षादि विरोधी, वो भाव जो है उनको रोकता है क्या करने से, आश्लेष करने से और देखने से, मतलब आलिंगन करने से और बात करने से रोकता है वो भाव, उसी को कवियों ने मान कहा है, मान कहा है। दोनों एक साथ ही रहते हैं और दोनों एक दूसरे में अनुरक्त रहते हैं और चाहते भी हैं दोनों कि हम उसका आलिंगन करें, उससे बात करें, फिर भी नहीं कर पाते हैं, इसको मान कहा गया। मान को ऐसा नहीं कि झगड़ा हो गया आप चलो कोर्ट में इधर उधर चलो ये चलो, परम अनुरक्त हैं दोनों और एक साथ ही हैं और उनको अभीष्ट है एक दूसरे का आलिंगन, एक दूसरे से बात करना, फिर भी नहीं बात भी नहीं करते हैं और एक दूसरे पर देखते भी नहीं है, आलिंगन भी नहीं करते हैं। इस भाव को कवियों ने मान कहा, इसको मान कहा जाता है। तो किसी गोपी में मान का उदय हुआ और अन्य गोपियों में गर्व का उदय हुआ। गर्व किसे कहते हैं, सौभाग्य रूप तारुण्य गुण ही सर्वोत्तमाश्रय ही स्वाभिष्ट प्राप्त शान्य हेलनम गर्व इति लेते हैं। जब किसी स्त्री में ये भाव होता है कि मैं बहुत सौभाग्यवती हूं, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है और मैं तरुणी हूं, मैं ज्योति हूं, मतलब मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी बहुत सुंदरता है, रूप तारुण्य, मुझमें और भी बहुत से गुण हैं और खास करके वो जो चाहती है वो पूरा हो गया हो, उसको मान मिल गया हो कोई वस्तु कुछ भी, तो उस समय वो दूसरे की अवहेलना करती है, जो अन्य अवहेलना, दूसरे स्त्री को अपने सामने कुछ नहीं गिनती है, तो इसको गर्व कहा गया है। ये विद्वानों ने ऐसा कहा। तो कुछ गोपियों के मन में, अब ज्यादा गोपियों के मन में गर्व हुआ, यह प्रेम ही गर्व का रूप धारण किया। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोई दोष है, भगवान कृष्ण और गोपियों में ये भाव उदित हुआ गोपियों में, तो ये कोई दोष है, दोष नहीं है, प्रेम ही मान के रूप में हो गया, प्रेम ही गर्व के रूप में हो गया। क्यों नहीं वह गोपी गर्व करे जो प्रियतन को अपने अधीन कर चुकी है श्याम सुंदर को, वो गर्व क्यों नहीं करेगी। गर्व करना यही स्वभाव है, यही स्वरूप है वास्तव में भक्त का, गर्व होना चाहिए हम कृष्ण के भक्त हैं, इस नाते से अगर गर्व होता है तो ये गर्व बहुत अच्छा है, ये स्वरूप है जीव का। कोई धन से गर्वित रहता है, हमको धन मिला है, कोई अपने स्वजनों के गर्व से गर्वित रहता है, कोई सुंदर शरीर के कारण गर्वित रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण हमें प्रिय मानते हैं, कृष्ण हमारे हैं और इस कारण से गर्व होते हैं, तो कृष्ण प्रेम है, ये होना चाहिए, गोपियों की शोभा बढ़ी उसके कारण। और एक गोपी ऐसी थी जो मान कर गई, वह कृष्ण से बोलना छोड़ दी, देखना छोड़ दी और कृष्ण आलिंगन के लिए चले तो हाथ झटकती है। यही प्रेम की गति है। श्रीपाल रूप गोस्वामी जी कहते हैं, अहेरी व गति प्रेमण स्वभाव कुटिला भवे अतो हेतोर व हेतोर वा जुनोर मान उच्चते उदंचति। प्रेम की यही गति है, जैसे सांप सीधा नहीं चलता है, अहे गति इवा, सांप कभी सीधा नहीं चलता है, आपने देखा होगा वो चलता ऐसे ऐसे चलता है, इसको अहे गति कहा गया, सांप की गति, अहे की गति, टेढ़ा चलता है, ऐसे प्रेम की गति टेढ़ी होती है, उसमें मान होना ही चाहिए, गर्व होना ही चाहिए, तब उसमें उत्कर्ष होता है, सीधा बोलने से वो अच्छा नहीं लगता है, सीधा व्यवहार करने से। तो राधा रानी में यह भाव हुआ कि सब दिन तो हमको एक प्राणेश्वरी कहते हैं, प्राण प्रिय कहते हैं, और आज सबको एक समान कर दिए, मैं जनरल बन गई। मतलब जैसे अन्य गोपियों को मान दे रहे हैं, उनका आलिंगन कर रहे हैं, उनका चुंबन कर रहे हैं, उनके साथ गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो राधारानी सोचती हैं कि आज मैं बिल्कुल सामान्य हो गई। कोई स्पेशल व्यवहार भगवान हमारे साथ नहीं किए। अन्य समय में तो उनको गलवाही देकर चलते हैं, और उस दिन सबको गलवाही देकर के चल रहे थे, बारी बारी से जमुना के पुलिन पर आ रहे थे, सबका गीत गा रहे थे, सबका श्रृंगार कर रहे थे। तो राधा रानी रूठ गई। रूठने पर तीन कार्य हुआ, एक तो छूना नहीं। भगवान कृष्ण ऐसे नाच रहे थे, गा रहे थे, तो देखे कि प्रिया जी रूठ गई, बैठ गई, तो वो आ गए किशोर जी के पास, और वो तो समझ गए उनका स्वभाव क्या हो गया इनको और क्यों इतना टेढ़ी हो गई। वो सब समझ गए कि आज जब सभी गोपियों को मैंने समान प्रेम दिया, बस ये इनको सहन नहीं हुआ। तो राधा ने अपना मुख फेर दिया। भगवान कहते हैं उन्होंने प्रयास किया, अनुनय किया। अनुनय करने में भगवान श्री कृष्ण प्रिया जी के चरण पर भी गिर जाते हैं, मुझे क्षमा कर दो, सब रो रही थी इसलिए मैंने सबको सम्मान दिया, लेकिन तुम मेरे लिए विशिष्ट प्रिय हो शिवराज है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम्हारे आगे मैं किसी को कुछ नहीं जानता हूं, ऐसे करने लगे। लेकिन वो राधा रानी हाथ से झटक रहे थे, ऐसा भी नहीं कहती थी कि हमसे मत बोलो, वो बोलती ही नहीं थी। या अभी कहना कि मत बोलो, बोलना है ना, तो वो बोली नहीं, नहीं जय जय। वो संकेत कर रहे थे कि इतनी हजारों गोपियां हैं, बस रही है उनके साथ, एकदम आंखों का रंग बदल गया, क्रोध भर गया मन में, बोलना नहीं, आलिंगन स्वीकार नहीं करना। भगवान देख रहे थे अन्य गोपियां वो गर्भ में है और ये मान में है, गर्भ और मान दोनों उल्टा होता है। मान तब उत्पन्न होता है जब कोई स्त्री सोचती है कि पति ने हमको मान नहीं दिया, हमारा आदर नहीं किया, और गर्भ तब होता है जब देखती है कि बहुत आदर मिला, मेरे सामने तो कोई स्त्री है ही नहीं। तो अन्य गोपियों को, चंद्रावली जी आदि को यही भाव हुआ कि हम कितना भाग्यवती हैं कि श्याम सुंदर आज हमारे अधीन है, हमको इतना आदर दे रहे हैं, इतना मान दे रहे हैं, उन्हें गर्व हुआ। वो अभी प्रेम ही है, वो होना स्वाभाविक है, और राधा रानी का भी स्वाभाविक है। वो अतो हेतो रहे तो रहा, रूप गोस्वामी जी कहते हैं वो किसी कारण से या बिना कारण के भी मान उत्पन्न हो जाता है, कोई कारण नहीं फिर भी मान उत्पन्न हो जाएगा, कोई कारण नहीं होगा फिर भी मान उत्पन्न हो जाएगा, और कभी कभी कारण से होता है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा को उगा हुआ देखे राधा रानी के साथ थे, तो वे वर्णन करते हैं कि हे श्री राधे, आपका मुख इतना सुंदर है कि इसके आगे चंद्रमा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है चंद्रमा। तो चंद्र चंद्र बार बार कर रहे थे, और आपका जो नख है वो भी चंद्र है, आपके पांच अंगुलियों में दाहिने हाथ में पांच चंद्र हैं, बाएं में पांच चंद्र है, पैर में पदनख जो है वो भी चंद्र है, ये चंद्र है, आपका तिलक चंद्र है, आपका ललाट ऐसा चंद्र है, चंद्र है। तो राधा रानी सोचने लगी, इसको चंद्रावली की याद आ रही है, चंद्र श्रेणी चंद्र अवली, अवली माने समूह, भगवान ने इस शब्द का प्रयोग कर दिया कि आपके देह में चंद्र समूह है, बस इतने पर उठ गए, बोली बोलना छोड़ दिया। भगवान तो हैरान हो गए, क्या हो गया, मैं तो प्रशंसा कर रहा हूं, और वास्तव में भगवान चंद्रावली की याद करके नहीं कह रहे थे, राधा रानी की शोभा का वर्णन कर रहे थे कि आपका मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, आपके श्री विग्रह में इतने चंद्र हैं, चंद्र हैं, तो चंद्र श्रेणियां हैं, चंद्र समूह है। तो राधा रानी ने यह सोच लिया, मतलब चंद्रावली, चंद्रावली चंद्र श्रेणी हमारे में, इनको चंद्रावली की याद आ रही है, वर्णन हमारा एक कपटी कर रहा है और याद चंद्रावली भी कर रहा है, तो उन्होंने बस रुठना चालू कर दिया, बोलना छोड़ दिया। कहते हे श्री राधे आपको क्या हो गया, क्या हो गया, आप क्यों नहीं बोल रही हो, नहीं बोलना, नहीं देखना, नहीं चलना। यहां भी वही दशा हुई, आज तो प्रत्यक्ष देख ली है कि सबको समान कर दिए, एक समान कर दिए। जिस स्त्री को बहुत आदर पहले से मिला है और उसको दिखा करके अन्य स्त्रियों को उतना ही आदर दिया जाए तो उसका उठना तो स्वाभाविक है, हमको समान कर दिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेम ही तरंगायित होता है मान के रूप में, घृणा नहीं, द्वेष नहीं, प्रेम घनभूत होकर। और इसी आशा से वो स्त्री मांग करती है कि हमारा प्रिय हमको मनाएगा, ये आशा छोड़ नहीं देती है कि नहीं मनाएगा, कहती है कि अब आज से जब तक जीऊंगी तुमसे बात नहीं करूंगी, जब तक जीऊंगी, ये शब्द का प्रयोग तो हमेशा होता रहता है। राधा रानी कहती है कि सखी कृष्ण ने इतना दुख दिया है, लगता जिसे कहती है कि सखी हम जब लग जीवो, वो कहते हैं तब लग मदन गोपाल लाल के पंथन पानी पियो, जब तक जीऊंगी ये मदन गोपाल के पंथ में पानी नहीं पीऊंगी। जा रही हूं, मान लो कहीं जा रही हूं और वो जहां रहते हैं वहां मुझे प्यास लग गई और मरने की नौबत है, फिर भी उनके घर के नजदीक का पानी नहीं पीऊंगी। उनको इतना घृणा, इतनी घृणा हो गई इस काले से। ऐसे यहां तक कहते हैं कि कोई भी काला हमारे सामने नहीं आना चाहिए, सारे कोयल को पकड़ करके चूने में रंग दो और ऊपर आकाश में सारा चंदोवा तान दो उजला कि आकाश न दिखाई दे, बादल न दिखाई दे, मैं देखना नहीं चाहती। इतना कपटी व्यक्ति है हमको पता नहीं था। और वह मान कितने देर के लिए है, बस दो चार मिनट के लिए, वही जीवन है, जीवन भर नहीं बात करूंगा। श्याम सुंदर मनाने लगते हैं, ललिता जी मनाने लगती हैं कि नहीं ठीक नहीं है, ऐसे हो गया। मानी तो अंदर से ही है, तो अंदर से प्रेम तो घनीभूत है, लेकिन फिर भी ला करके श्याम सुंदर को बैठाती हैं, श्याम सुंदर क्षमा मांगते हैं। जैसे बरसानीमान मंदिर में एक चित्र है जिसमें भगवान क्षमा मांग रहे हैं राधा रानी से, तो राधा रानी जल्दी नहीं मानती है, लेकिन धीरे 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 आखिर परम प्रियतम है, अपने प्राण है, तो किसी न किसी बहाने से मानती है। एक दिन की बात है, लीला दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी बोली कि हे प्रियतम, आप बांसुरी बजा करके ब्रज गोपियों को अपने बस में रखते हैं, कभी भी आकर्षित कर लेते हैं, मैं बांसुरी बजाना सीखना चाहती हूं, आप मुझको बांसुरी बजाना सिखा दीजिए और तब मैं बांसुरी बजा करके आपको अपने बस में रखूंगी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तो बांसुरी बजाने के लिए एक मुद्रा होती है और इसके लिए आपको कृष्ण बनना पड़ेगा, मेरा स्वरूप धारण करना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा ठीक है सिखाइए। राधा रानी सीखने लगे, भगवान ने कहा कैसे, तीन जगह टेढ़ा होकर खड़ा होइए, त्रिभंग सुंदर इस मुद्रा में खड़ा हुए। तो राधा रानी कहती ये तो हमसे हो ही नहीं सकता है। तो बांसुरी सीखने लगे किसी तरह से, भगवान ने कहा कि आपको हमारा वस्त्र पहनना पड़ेगा। तो राधा रानी पीताम्बर पहनी, मोर मुकुट धारण की, लेकिन भगवान ने एक शर्त करा लिया, ठीक है मैं आपको बांसुरी बजाना सिखा दूंगा लेकिन आप हमको मान करना सिखा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत तंग हो जाता हूं, तो मैं मान करने लगूंगा तब आपको पता चलेगा कि कितना कष्ट होता है मनाने में, तो हमको मान करना सिखा दीजिए। तो बांसुरी बजाना सिखा रहे हैं भगवान, तो सिखाते सिखाते प्रवीण कर दिए, राधा रानी पहले तो केवल फूंकती थी, तो श्याम सुंदर कहते ऐसे ना, ऐसे नहीं, अंगुली को ऐसे चलाइए, ऐसे चला, आप फूकिए मैं चला रहा, भगवान बताते हैं, दर्शनी सिखा रहे हैं भगवान। तो राधा रानी सीखते सीखते सीखते, तो भगवान ने कहा कि अब मुझको मान सिखाइए। तो राधा रानी ने कहा कि इसके लिए तो आपको राधा बनना पड़ेगा ना, आप मान तभी सीखेंगे ना जब आप स्त्री बनेंगे, आप लहंगा पहनेंगे, आप कंचुकी धारण करेंगे, तो भगवान कहते ये तो नहीं हो सकता है, भले सीखे या न सीखे। पहले तो ये कहते, तब तक नहीं सीख पाएंगे, क्या और कोई उपाय नहीं है सीखने का? राधा रानी कहते नहीं नहीं, ऐसे तो आपको ये वेश धारण करना पड़ेगा और मैं कृष्ण बनूंगी, मैं आपको मनाऊंगी तो, और आपको मान सिखाऊंगी, ऐसे मत बोलिएगा। भगवान ने कहा और क्या क्या करना होता है? तो राधा रानी ने कहा कि जब मैं बोलूं तो आप बोलना मत, जब मैं आपकी तरफ देखूं तो मेरी तरफ देखना मत, और जब मैं आपके चरण में, मतलब राधा रानी बने हुए कृष्ण के चरण को छू करके कहूं कि हे श्री राधे मान जाओ, तो आप हाथ झटक देना, धीरे धीरे सीखोगे इस तरह से मां। तो कृष्ण बने राधा रानी और राधा रानी बने कृष्ण, अब मान की शिक्षा देना राधा रानी चालू। राधा रानी कहती है हे प्रिय श्री राधे आप कृपा करके हमारी ओर देखो, तो राधा रानी तुरंत देखेंगे, मतलब कृष्ण तुरंत देखने लगे। तो राधा रानी कहती है नहीं 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 ऐसे नहीं, वो पहले कही थी कि आप हमारी तरफ देखना मत, और श्री कृष्ण मान सीख रहे हैं तो धीरे धीरे सीखे, पहले बोलना छोड़ दिए, देखना छोड़ दिए। राधा रानी बने हैं कृष्ण और कृष्ण ने कृष्ण राधा रानी बने, राधा रानी कृष्ण बने। तो कृष्ण ने कहा हे श्री राधे तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम कुछ मुझसे कुछ बातें करो, मेरे तरफ देखो, मुझसे कुछ बात करो, मैं बात करने के लिए मर रहा हूं। तो कृष्ण जो श्री राधा रानी बने हुए कहते हैं क्या बात करना है कहीं। तो फिर राधा रानी कहा ऐसे नहीं सीख पाओगे, अच्छा अब मत बोलना, कितना भी मैं बोलवाऊं बोलना मत, मेरे तरफ देखना मत और मुझे छूना मत। धीरे धीरे कृष्ण सीखने लगे, राधा रानी के रूप में थे तो राधा रानी जो कृष्ण बनी थी अब मनाने लगे, और कृष्ण तो पक्का सीख गए, अब लगी मनाने हे श्री राधे हमको क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन राधा बने हुए कृष्ण अब एकदम तो राधा रानी जो कृष्ण बनी थी अब चरण में गिरने लगी और सचमुच के रोने लगी, रोने लगे कि हाय मेरा जीवन बेकार है, आप इस तरह से क्रोध में हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं। लेकिन राधा रानी बने हुए कृष्ण तो बोले ही नहीं, बोले ही नहीं, अब मैं राधा रानी रोने लगी। जब बिल्कुल रोने लगी फुटफुट करके, तब कृष्ण कहते हैं आपको पता चला ना कि मान मनाने में कितना परिश्रम होता है, एक दिन में ये हालत हो रही है और मुझे रोज रोज यही मनाना पड़ता है। अब अनुभव हो गया कि मान मनाने में कितना परिश्रम पड़ता है, अब अपमान नहीं करेंगे ना। तो राधा रानी कान पकड़ती नहीं 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 कभी मान नहीं करूंगी, कभी मान नहीं करूंगी, लेकिन वो करना ही है, दो मिनट के बाद फिर मान। तो राधा रानी को मान हो गया जमुना के पुलिन पर, और भगवान समझा रहे, जोर से नहीं बोल रहे, अब चलिए अन्य गोपियों के साथ खड़ा हुई है, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे प्राणों से भी प्रिय है, मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं बस अब कोई उपाय नहीं सोच रहा था कि श्याम सुंदर करे क्या। और उन गोपियों को तो गर्व हो गया, तो उनके गर्व को दूर करने के लिए अब गर्व का मतलब ये था कि वे ये सोचते थे किसी भी क्रिया में किसी भी प्रेम के अंग में कृष्ण ही को गरज है, इनको गरज है, हम बहुत ज्योति हैं, रूपवती हैं, ये हैं, वो हैं। पहले रो रही थी प्रलय गीत में इस तरह से, और अब भाव बदल गया, इतना अपने को श्रेष्ठ जानने लगी, इतना श्रेष्ठ गर्व हुआ कि वो हमारे सामने कौन स्त्री है, कोई नहीं है तीनों जगत में। अरे बिल्कुल ठीक हुआ। तो भगवान ने सोचा कि इनका जब संग छोड़ूंगा, छिप जाऊंगा, तो इनका गर्व नष्ट हो जाएगा। अरे जिसको मान हुआ है इसको तो अभी साथ में ले जाकर के मनाना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं माने। तो उन्होंने धीरे से प्रिया जी का हाथ पकड़ा, कहे उन्होंने कहा हे किशोरी जी अब चलिए मेरे साथ, थोड़ा मेरी बात मानिए, चलिए चलिए चलिए। तो राधा रानी चल दी, उनका हाथ पकड़े चल दिए, और अन्य गोपियां तो मस्त थी, वो तो विभोर थी प्रीतम का गुण गाने में, और उनको दिखाई नहीं दिए, तुरंत ही छिप गए एकांत वहीं पर पास में, गोपियों के वचन को सुनने के लिए छिप गए। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तासां तत्सौभग मदम वीक्षमानम चकेशव प्रसन्नाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयत। गोपियों के इस सौभाग्य मद को और मान को केशव ने देखा, केशव का अर्थ ब्रह्मा, क मन ब्रह्मा, इस मन शिव जी, ब्रह्मा और शिव जी के भी कंट्रोलर भगवान ने देखा कि स्त्रियों को इतना गर्व हो गया, एक को मान हो गया, तो उनके सौभाग्य मद को और मान को प्रसन्न आया, मद को प्रसन्न आया और जो मान कर गई थी उसके लिए प्रसाद आया, उसको प्रसन्न करने के लिए, एक को खुश करने के लिए और औरों के मद को दूर करने के लिए, तत्र एवं अंतर दिया था, वहीं पर छिप गए, कहीं गए नहीं, किसी झुरमुट के ओट में हो गए, कुंज के ओट में हो गए, कहीं गए नहीं, छिप गए, वहीं अंतर्धान हो गए। अब इसके बाद गोपियां जब कृष्ण को नहीं देखी तो उनकी जो विकल दशा हुई है वो तीसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, उनके विकलता का, दुख का वर्णन किया। तो गोपियों का जीवन तो रोते रोते ही बीत रहा है। अभी आपने सुना प्रणय गीत में वो रोने लगी, रो रही थी, हा कर रही थी, और कुछ ही देर के लिए भगवान ने अनुकूल लीला की और फिर छिप गए। गोपी गीत में वही हाहाकार है, तीसरे अध्याय में कृष्णान्वेषणम है, और वास्तव में भगवान के विरह की लीला को सुनने से ही चित्त अधिक अविष्ट होता है भगवान में। गोपियां किस तरह उन्मत्त पागल की तरह कृष्ण को वृंदावन में खोज रही हैं, यह तीसवें अध्याय में वर्णित है, जिसकी कथा कल से प्रारंभ की जाएगी।